आगे सबक देखिए भाई, قال وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تقع ولو صبي أحد الزوجين وقعت البينونة بينهما بغير طلاق وإن صبيا معا لم يقع البينونة وقال الشافعي رحمه الله تعالى وقعت। भाई गुज़श्ता सबक में आप मसला पढ़ रहे थे कि अगर दारुल हर्ब में मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो जाए तो फिर इस सूरत में उनमें जुदाई उस वक्त आएगी जब वो औरत तीन हैज गुजार ले, तीन हैज गुजार लेगी तो इन दोनों में जुदाई आ जाएगी। जबकि इसके बरक्स अगर दारुल इस्लाम के अंदर मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान होता था तो फिर वहां पर आपने मसला पढ़ा कि काजी जो है दूसरे पर इस्लाम को पेश करता था और फिर वो अगर मुसलमान हो जाता तो उनको निकाह पर बरकरार रखता, और अगर वो इस्लाम से इनकार कर देता था तो फिर काजी उनमें जुदाई करवा देता था। लेकिन दारुल हर्ब के अंदर अगर मियां बीवी में से कोई मुसलमान हुआ तो वहां तो काजी नहीं है, वहां तो हमारी हकूमत नहीं है, तो दूसरे पर इस्लाम का पेश करना मुतअज़्ज़िर हो गया। लिहाजा इस सूरत में जब हुक्म की निस्बत इल्लत और सबब की तरफ न की जा सके तो फिर हुक्म की निस्बत जो है वो शर्त की तरफ की जाती है। और जैसे आम निकाह के अंदर खावंद बीवी को तलाक दे देता है तो फौरन ही बीवी आगे निकाह नहीं कर सकती, बल्कि उसको इद्दत गुजारना पड़ती है और इद्दत के बाद निकाह के असरात पूरे तौर पर खत्म हो जाते हैं और फिर औरत आगे निकाह कर सकती है। मालूम हुआ पूरी जुदाई के लिए औरत को तीन हैज गुजारने पड़ते हैं, तो ये तीन हैज जुदाई के लिए शर्त हैं। मदखूल बीहा को खावन ने तलाक दी है तो वो तीन हैज गुजारेगी, ये शर्त पूरी होगी यानी इद्दत गुजारेगी तो फिर ही वो आगे निकाह कर सकती है। तो जाब्ता आपने पढ़ा था कि अगर हुक्म की निस्बत इल्लत की तरफ ना हो सके तो फिर हुक्म की निस्बत सबब की तरफ की जाती है, और अगर सबब की तरफ भी हुक्म की निस्बत ना हो सके तो फिर हुक्म की निस्बत जो है वो शर्त की तरफ की जाती है। और यहां पर ये जो तीन हैज औरत गुजारती है ये शर्त है जुदाई के लिए, तो लिहाजा यहां पर भी इस शर्त की तरफ हुक्म की निस्बत की जाएगी, इस शर्त को सबब के कायम मकाम करार दे दिया जाएगा, ये शर्त पाई जाएगी तो जुदाई आ जाएगी। तो दारुल हर्ब में मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो जाए तो औरत तीन हैज गुजार लेगी तो दोनों में जुदाई आ जाएगी, और अगर तीन हैज गुजारने से पहले पहले दूसरा भी मुसलमान हो गया, एक तो मुसलमान हो चुका है दूसरा भी मुसलमान हो गया, तो फिर ये अपने निकाह पर बरकरार रहेंगे, फिर कोई जुदाई वगैरह नहीं आएगी भाई। और साहिब हिदायत ने बतलाया था जैसे कि कुआं खोदने के अंदर, उसके अंदर भी देखो एक शख्स रास्ते के अंदर कुआं खोद देता है और कोई दूसरा चलने वाला उस कुएं में गिरा और मर गया, तो फुकहा फरमाते हैं कि यहां इस शख्स के कुएं में गिरने की इल्लत इसका वजनी होना है, ये वजनी होने की वजह से कुएं में गिरा और मर गया। लेकिन ये वजनी होना ये तो एक तबई चीज है, इसकी तरफ इस मरने की निस्बत नहीं की जा सकती, क्योंकि अल्लाह ने चीजों को बनाया ही ऐसा है, इंसान को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि ये वजन वाला है, इसका वजन है भाई। तो फिर जब इल्लत की तरफ हुक्म की निस्बत न हो सके तो फिर सबब की तरफ हुक्म की निस्बत की जाती है, तो और सबब इस शख्स का इस रास्ते पर चलना है, लेकिन इस रास्ते पर चलना तो मुबाह है, हर शख्स का हक है वो रास्ते पर चल सकता है, तो लिहाजा इस कत्ल की निस्बत इस रास्ते पर चलने की तरफ भी नहीं की जा सकती, इसलिए क्योंकि रास्ते पर चलना भी रास्ते पर चलना मुबाह है, उसमें किसी किस्म की ज्यादती नहीं। तो फिर जब हुक्म की निस्बत इल्लत की तरफ भी नहीं हो सकती, सबब की तरफ भी नहीं हो सकती, तो फिर हुक्म की इल्लत शर्त की तरफ की जाती है, और इस शख्स के कुएं में गिरने की शर्त जो है वो कुआं खोदना है। अगर कुआं खोदा होगा तो कोई उसमें गिर सकता है, अगर कुआं ही नहीं खोदा तो उसमें कोई गिर भी नहीं सकता, तो लिहाजा कुएं का खोदना शर्त हुआ। अब उसकी तरफ इस कत्ल की निस्बत कर देंगे और वो जो जिस शख्स ने कुआं खोदा है उस पर दियत वाजिब हो जाएगी। और फिर आपने ये मसला भी पढ़ा कि ये जो औरत तीन हैज गुजारती है ये जुदाई के तीन हैज हैं, ये इद्दत के तौर पर तीन हैज नहीं है भाई। इद्दत के तीन हैज तो जुदाई के बाद औरत गुजारती है और ये तीन हैज तो किस लिए हैं, ये तो जुदाई के हैं भाई, लिहाजा इसमें मदखूल बिहा और गैर मदखूल बिहा दोनों बराबर हैं। हालांकि तलाक के मसले में आपने पढ़ा है कि खावंद अगर बीवी को तलाक दे और उससे सोहबत कर चुका है फिर इद्दत वाजिब होती है कि कहीं औरत हामिला ना हो, लेकिन अगर खावंद ने सोहबत ही नहीं की, अभी रुखसती ही नहीं हुई और उससे पहले खावंद तलाक दे दे तो फिर औरत पर कोई इद्दत नहीं होती, तलाक देते ही निकाह टूट गया, अब वो फौरन ही आगे जहां चाहे वो औरत निकाह कर सकती है। तो तलाक के मसले के अंदर तो मदखूल बिहा और गैर मदखूल बिहा में फर्क है, मदखूल बिहा पर इद्दत है, गैर मदखूल बिहा पर इद्दत नहीं है भाई। लेकिन ये तीन हैज जो औरत ने गुजारे हैं ये जुदाई के हैं भाई, ये इद्दत वाले नहीं, इसमें मदखूल बिहा और गैर मदखूल बिहा दोनों बराबर हैं, दोनों चाहे खावंद ने सोहबत की है चाहे खावंद ने सोहबत नहीं की, हर हाल में औरत को ये तीन हैज गुजारने पड़ेंगे फिर ही जुदाई आएगी। और फिर उसके बाद मसला जिक्र किया था साहिब हिदाया ने कि जब दारुल हर्ब में मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो गया और जुदाई आ गई तो फिर क्या औरत को इद्दत भी गुजारना पड़ेगी या नहीं, क्योंकि ये जो तीन हैज गुजारे हैं ये तो जुदाई के हैं, ये तो इद्दत के नहीं, तो इन तीन हैजों के बाद जब जुदाई आ गई क्या अब औरत पर इद्दत वाजिब होगी या नहीं। तो हर्बिया के मसले के अंदर तो साहिबैन और इमाम साहब का इत्तेफाक है, खावंद मुसलमान हुआ है दारुल हर्ब में और औरत क्या है, हर्बिया है, तो तीन हैज गुजारने पर ये अपने खावन से जुदा हो गई, अब इसके ऊपर क्या इद्दत आएगी, तो हमारे तीनों इमा फरमाते हैं ये औरत हर्बिया है, ये तो गैर मुस्लिमा है, तो लिहाजा इस पर इस्लामी हुक्म नाफिज नहीं होगा क्योंकि न इस पर हमें विलायत इल्जाम है ना इसने खुद इल्तिजाम किया है, तो हर्बिया पर तो बिल इत्तेफाक इद्दत नहीं होगी। लेकिन अगर ये जब जुदाई आई और मुसलमान होने वाली औरत थी भाई, तो अब उसने तीन हैज गुजार लिए जुदाई आ गई तो अब इस जुदाई के बाद इद्दत होगी या नहीं, तो इमाम साहब फरमाते हैं नहीं इस पर कोई इद्दत नहीं है, जैसे हर्बिया पर इद्दत नहीं इस मुसलमान औरत पर भी कोई इद्दत नहीं, जबकि साहिबान फरमाते हैं नहीं ये मुसलमान औरत है और मुसलमान औरत पर अब इस्लामी अहकाम लाजिम हो गए और जुदाई के बाद औरत इद्दत गुजारती है तो लिहाजा ये औरत भी अब तीन अलग हैज गुजारेगी इद्दत के भाई। जबकि इमाम साहब फरमाते नहीं ये जो औरत इद्दत गुजारती है ये साबिका निकाह का असर होता है, साबिका निकाह का असर होता है खावंद की मिल्कियत के एहतराम के तौर पर, उसकी इज्जत के तौर पर औरत तीन हैज गुजारती है, शरीयत ने उस पर ये इद्दत वाजिब की है ताकि पता चल जाए कहीं ये औरत इस खावंद से हामिला तो नहीं, तो ये इद्दत औरत पर किस लिए वाजिब की है शरीयत ने, खावंद की मिल्कियत निकाह के एहतराम के तौर पर, उसकी इज्जत के तौर पर, जबकि हर्बी की मिल्कियत का तो कोई एहतराम नहीं है। इमाम साहब की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि दारुल हर्ब के अंदर औरत मुसलमान हुई है तो तीन हैज उसने गुजार लिए, अब वो खावन से जुदा हो गई, लेकिन इसका खावन तो हर्बी है, इसका खावन तो क्या है, हर्बी है, मुसलमान की मिलके निकाह का तो एहतराम है, हर्बी की मिल्कियत का तो कोई एहतराम नहीं, जब हर्बी की और मिल्कियतों को कोई एहतराम नहीं तो उसके मिलके निकाह का भी कोई एहतराम नहीं होगा और औरत पर कोई इद्दत वाजिब नहीं होगी भाई। और फिर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर मुसलमान होने वाला खावंद है और बीवी उसकी किताबिया है यानी यहूदी या ईसाई है, चाहे ये मसला दारुल हर्ब में पेश आए चाहे दारुल इस्लाम में कि खावंद मुसलमान हुआ और बीवी किताबिया है, तो इस सूरत में फिर इनमें जुदाई नहीं आएगी बल्कि निकाह इसी तरह बरकरार रहेगा, क्योंकि मुसलमान के लिए तो इब्तिदाअन भी यहूदी या ईसाई औरत से निकाह जायज है, तो बकाअन भी उसके निकाह में अगर यहूदी या ईसाई औरत हो तो इसमें कोई हरज नहीं है, तो ये अपने निकाह पर बरकरार रहेंगे। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर, قال وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تقع. بھئی یاد رکھو اگر دار الحرب سے میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کر دار الاسلام میں آتا ہے اور اس کا یہیں رہنے کا اب ارادہ ہے, اس کا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے, تو اس صورت میں عند الاحناف میاں بیوی میں جدائی آ جائے گی, میاں بیوی میں جدائی آ جائے گی, اس لیے کیونکہ دونوں کا دار الگ الگ ہے, یعنی دونوں کا ملک الگ الگ ہو گیا, دونوں میں سے ایک تو دار الحرب میں ہے اور دوسرا مسلمان ہو کر کہاں آ گیا ہے دار الاسلام میں, تو میاں بیوی میں سے ایک جو ہے ایک ملک میں ہے اور دوسرا دوسرے ملک میں ہے, تو حقیقتاً دونوں کے دار الگ الگ ہیں, اور نیز حکمن بھی دونوں کے دار الگ الگ ہیں, کیونکہ جو ہجرت کر کے دار الاسلام آیا ہے اس کا اب یہیں رہنے کا ارادہ ہے, اس کا واپسی کا ارادہ نہیں, تو اس کو کہتے ہیں کہ حکمن بھی دونوں کا دار الگ الگ ہے, یعنی حکم بھی یہی لگایا جائے گا دونوں کا دار الگ ہے, اگر اس کا واپسی کا ارادہ ہوتا تو پھر تو حکمن دار الگ نہ تھا, پھر آپ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ دونوں کا دار الگ ہے, اس لیے کیونکہ اس کا واپسی کا ارادہ ہے. توجہ ہے, مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے نزدیک اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کر دار الاسلام میں آ گیا اور اس کا یہیں رہنے کا ارادہ ہے, تو حقیقت کے اعتبار سے بھی دونوں کا دار الگ الگ ہے, میاں بیوی دونوں کا ملک الگ الگ ہے, ایک ایک ملک میں ہے تو دوسرا دوسرے ملک میں ہے, اور نیز حکم بھی یہی لگایا جائے گا کہ دونوں کے دار الگ ہیں, کیونکہ اس جو مسلمان ہو کر آیا ہے اس کا اب یہی رہنے کا ارادہ ہے, واپسی کا ارادہ نہیں ہے, تو حقیقتاً دار الگ ہونے کا کیا معنی کہ دونوں کا ملک الگ الگ ہے, حقیقت میں ایک ایک ملک میں ہے دوسرا دوسرے ملک میں, اور حکمن بھی دونوں کا دار الگ ہوگا, کب؟ جب اس کا واپسی کا ارادہ نہ ہو, جب اس شخص کا واپسی کا ارادہ نہیں ہے تو حکم بھی یہی لگایا جائے گا کہ دار الگ ہیں, اور اگر واپسی کا ارادہ ہے پھر حکم نہیں لگایا جائے گا. تو عند الاحناف جب میاں بیوی کا دار یعنی ملک الگ ہو جائے, حقیقتن بھی الگ ہو یعنی دونوں الگ الگ ملک میں ہیں, اور حکمن بھی الگ ہو کہ جو ہجرت کر کے آیا ہے اس کا اب یہیں رہنے کا ارادہ ہے, تو اس صورت میں خود بخود دونوں کے درمیان جدائی آ جائے گی. تو عند الاحناف جدائی کا سبب کیا ہوگا؟ تباین دار, یعنی دونوں کے دار یعنی ملک کا الگ الگ ہونا, حقیقتن بھی ملک الگ اور حکمن بھی ملک الگ. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تباین دار سے کوئی اثر نہیں پڑتا, اس کی وجہ سے میاں بیوی میں جدائی نہیں آئے گی. وہ فرماتے ہیں اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کو مسلمان قید کر لیں اور قیدی بنا کر دار الاسلام میں لے آئیں تو پھر اس صورت میں دونوں میں جدائی آ جائے گی. تو ہمارے نزدیک جدائی کی علت کیا ہے؟ تباین دار, حقیقتن بھی ہو اور حکمن بھی ہو. جبکہ شوافع کے نزدیک جدائی کی علت قیدی بنانا ہے. جدائی کی علت کیا ہے؟ قیدی بنانا ہے, یعنی جب مسلمان کسی حربی مرد یا عورت کو قید کر کے دار الاسلام لے آئے تو اس صورت کے اندر وہ فرماتے ہیں میاں بیوی میں جدائی آ جائے گی. تو حاصل کلام کیا؟ عند الاحناف جدائی کا سبب کیا؟ تباین دار, حقیقتن بھی ہو اور حکمن بھی ہو بھائی. اور عند الشوافع جدائی کا سبب کیا ہے؟ قیدی بنانا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا میں صورتیں ذکر کروں گا, آپ مجھے مسئلہ بتلاتے جائیے کیا حکم ہوگا. ایک مرد یا عورت دار الحرب سے مسلمان ہو کر دار الاسلام میں آ گیا ہے اور اس کا اب یہیں رہنے کا ارادہ ہے, جی اب آپ مجھے بتائیے عند الاحناف جدائی آ گئی کہ نہیں آئی؟ جدائی آ گئی, کیونکہ تباین دار پایا گیا حقیقتن بھی اور حکمن بھی کہ اس کا واپسی کا ارادہ نہیں ہے. جبکہ شوافع کے نزدیک جدائی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جدائی نہیں آئے گی, کیونکہ ان کے نزدیک جدائی کا سبب تباین دار ہے ہی نہیں بلکہ قیدی بنانا ہے, اور اس کو تو کسی نے قیدی نہیں بنایا. دوسری صورت مسلمانوں کا ایک لشکر دار الحرب میں گیا تھا, وہ وہاں سے کچھ لوگوں کو قید کر کے لے آیا دار الاسلام کے اندر. اب کیا صورت ہوگی؟ عند الاحناف اگر میاں بیوی میں سے ایک کو قید کر کے لائے ہیں तो फिर जुदाई आएगी या नहीं आइंदा लहनाफ, जुदाई आ जाएगी क्योंकि मुसलमानों ने कैदी बनाया और कैद करके दारुल इस्लाम में ले आए, तो हकीकतन भी दार अलग है और हुक्मन भी दार अलग है। अब मुसलमान इसको वापस नहीं जाने देंगे, इनको गुलाम या बांदी बनाकर रखेंगे, तो तबाही उन्हें दार पाया गया। और आइंदा शवाफिया भी जुदाई आ गई क्योंकि उनके नजदीक जुदाई की इल्लत कैदी बनाना है, और यहां पर भी मियां बीवी में से एक को कैदी बना लिया गया है। और तीसरी सूरत कि मियां बीवी दोनों को मुसलमान कैद करके ले आए, तो फिर इस सूरत में इंदल अहनाफ जुदाई नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि मुसलमान दोनों को कैद करके लाए हैं, तो मियां बीवी का दार अलग अलग है ही नहीं भाई, दोनों एक ही दार यानी दारुल इस्लाम में इस वक्त मौजूद हैं। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक फिर भी दोनों में जुदाई आ जाएगी क्योंकि उनके नजदीक इल्लत जुदाई की कैदी बनाना है और वो पाई जा रही है। जाब्ते समझ में आ गए। अब देखिए भाई किताब पर, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, व इदा खराजा अहदुज़्ज़ौजैनी इलैना मिन दारिल हर्ब मुस्लिमन, कि जब निकल आया मियां बीवी में से कोई एक हमारी तरफ दारुल हर्ब से मुस्लिमन मुसलमान होकर, वकातिल बैनूनतु बैनहुमा, तो उनके दरमियान जुदाई वाकई हो जाएगी हमारे नजदीक, क्योंकि तबायुन दार हकीकतन भी है और हुक्मन भी है कि उसका भी यहीं रहने का इरादा है। वकाल शाफिय रहमहुल्लाह तआला ला तकाउ, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इनमें जुदाई वाकई नहीं होगी क्योंकि तबायुन दार से जुदाई नहीं आती बल्कि कैदी बनाने से आती है, और यहां तो किसी ने इसको कैदी नहीं बनाया। वलौ सुबिया अहदुज़्ज़ौजैनी वकातिल बैनूनतु बैनहुमा, और अगर मियां बीवी में से किसी एक को कैदी बना लिया गया, वकातिल बैनूनतु बैनहुमा, तो इन दोनों के दरमियान जुदाई वाकई हो जाएगी, बिगैरी तलाक, इन बगैर तलाक के। दूसरी सूरत, मियां बीवी में से किसी एक को मुसलमानों ने कैदी बनाया और साथ ये कैद भी लगाए, कैद करके इसको दारुल इस्लाम में ले आए, कैद करके दारुल इस्लाम में ले आए, तो अब भी तबायुन दार पाया गया हकीकतन भी और हुक्मन भी के मुसलमान अब उसको वापस नहीं जाने देंगे, उसको गुलाम या बांदी बनाकर रखेंगे। तो लिहाजा आइंदा अहनाफ भी जुदाई आ गई और आइंदा शवाफिया भी जुदाई आ गई क्योंकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक कैदी बनाना इल्लत थी और मुसलमानों ने इसको कैदी बनाया है, तो दोनों के नजदीक जुदाई आ गई। तवज्जो है। और नीज ये जुदाई जो है ये तलाक के हुक्म में नहीं होगी बल्कि ये फस्खे निकाह शुमार होगी, ये जुदाई फस्खे निकाह शुमार होगी, जुदाई आ गई, क्योंकि वो जुदाई जो खावंद की तरफ से आए वो तलाक के हुक्म में होती है, लेकिन यहां तो उनको कैदी बनाया गया है, यहां खावंद या बीवी का इसमें दखल नहीं है भाई। तो अब देखो मुसलमान मियां बीवी में से एक को कैदी बनाकर यहां लाए हैं, तो हमारे नजदीक भी जुदाई आ गई, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक भी जुदाई आ गई। मालूम हुआ इस मसले में हम दोनों का इत्तेफाक है, शवाफे का भी और अहनाफ का भी, कि जुदाई आ जाएगी। अलबत्ता दलील अलग अलग है, इल्लत अलग अलग है जुदाई की, उनके नजदीक जुदाई की इल्लत कैदी बनाना है और हमारे नजदीक जुदाई की इल्लत तबायुन दार है भाई, तो इसको इजमाए मुरक्कब कहते हैं। यह बात पहले भी गुजर चुकी है कि फुकहा एक हुक्म के अंदर तो इत्तेफाक कर लें लेकिन इल्लत और दलील दोनों की अलग अलग हो, तो यहां पर भी ये इजमाए मुरक्कब है। तो कहते हैं वो वलौ सुबिया अहदुज़्ज़ौजैनी, और अगर मियां बीवी में से किसी एक को कैदी बनाया गया, और मैंने बताया ये कैद भी साथ याद रखना, कैदी बनाकर दारुल इस्लाम में ले आए ताकि दोनों के नजदीक इल्लत पाई जाए। तो कहते हैं वलौ सुबिया अहदुज़्ज़ौजैनी, और अगर मियां बीवी में से किसी एक को कैदी बनाया गया, वकातिल बैनूनतु बैनहुमा, तो इन दोनों के दरमियान जुदाई वाकई हो जाएगी, बिगैरी तलाक, इन बगैर तलाक के, व इन सुबिया मान, और अगर इन दोनों को इकट्ठा कैदी बनाया गया और कैद करके दारुल इस्लाम में ले आए, तो इंदा लखनाफ मियां बीवी दोनों दारुल इस्लाम में मौजूद हैं, तो तबायुन दार नहीं लिहाजा जुदाई नहीं, ये अब भी मियां बीवी हैं। जबकि आइंदा शवाफे कैदी बना लिया गया और कैदी बनाना इल्लत है जुदाई की, लिहाजा दोनों में जुदाई आ जाएगी। तो कहते हैं वह इन सूबी या मान, और अगर इन दोनों को इकट्ठा कैदी बनाया गया लम यकाइल बैनूनत तो हमारे नजदीक जुदाई वाकई नहीं होगी। वकाल शाफी रहमहुल्ला वकात, और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं कि जुदाई वाकई हो जाएगी। फल हासिल, तो हासिल कलाम ये कि अन सबब हुआ तबायुन दून सब ये इंदना, कि जुदाई का सबब जो है वो तबायुन दार है, दून सब ये न कि कैदी बनाना, इंदना हमारे नजदीक, हमारे नजदीक सबब तबायुन दार है, कैदी बनाना नहीं है। वह हुआ यकूल बे अक्सी ही, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह इसके बरअक्स फरमाते हैं, वो फरमाते हैं जुदाई की इल्लत कैदी बनाना है, तबायुन दार नहीं है। भाई लहू, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन तबायुन असरुहु फिन क़िताइल विलायति वदालिक ला युअस्सिरु फिल फुरक़ति कल हर्बी मुस्तअमिनी वल मुस्लिम मुस्तअमिन। भाई एक है हर्बी, एक है जिम्मी और एक है मुस्तअमिन। हर्बी वो शख्स जो दारुल हर्ब में रहता है, जिम्मी वो गैर मुस्लिम जो दारुल इस्लाम में रहता है, और मुस्तअमिन उस शख्स को कहते हैं जो अमान लेकर दूसरे मुल्क में जाए। अगर यहां से कोई मुसलमान अमान लेकर दारुल हर्ब जाता है, मसलन वीजा वगैरह लेकर जाता है, तो इसको मुस्तअमिन कहेंगे। और इसी तरह अगर दारुल हर्ब वालों से हम तो हालत जंग में हैं, लेकिन वहां से अगर कोई हर्बी अमान लेकर दारुल इस्लाम के अंदर आता है तो इसको भी मुस्तअमिन कहेंगे। तवज्जो है, तो कोई मुसलमान उनके वतन जाए अमान लेकर वो भी मुस्तअमिन, और हर्बी कोई अमान लेकर हमारे वतन में आए तो ये भी मुस्तअमिन है। भाई तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तबायुन दार से विलायत मुनक़ति' होती है, इससे मियां बीवी में जुदाई नहीं आती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, तबायुन दार से विलायत मुनक़ति' होती है, इससे जुदाई में कोई असर नहीं पड़ता, इसकी वजह से जुदाई नहीं आती। इनकिताए विलायत यानी विलायत मुनकते होती है। विलायत का क्या माना यहां, तो शारहीन फरमाते हैं इनकिताए विलायत का माना यह है कि इंसान अपनी जान और माल का मालिक नहीं रहता, इंसान अपनी जान और माल का मालिक नहीं रहता। देखो दारुल हर्ब वालों के साथ हम हालत जंग में हैं, अगर कोई मुसलमान गलती से वहां चला गया तो याद रखो दारुल हर्ब वाले उसको पकड़ लेंगे। अब ना वो मुसलमान अपनी जान का मालिक रहा ना अपने माल का मालिक रहा, मालूम नहीं वो इसको जिंदा भी छोड़ते हैं या नहीं, या तो वो इसको कत्ल कर देंगे या इसको गुलाम बनाकर रखेंगे, और नीज उसकी अपने माल से भी मिल्कियत खत्म हो गई, वो माल उस माल पर भी हर्बी कब्जा कर लेंगे। भाई तो जब भी कोई मुसलमान दारुल हर्ब में गलती से अगर जाता है बगैर अमान लिए तो उसकी अपनी जान पर से भी मिल्कियत खत्म और माल पर से भी मिल्कियत खत्म हो गई, अब उसका जान और माल महफूज न रहा। भाई इसी तरह अगर हर्बी हमारे वतन में आता है गलती से, भाई दारुल इस्लाम में वो गलती से आ गया तो उनके साथ तो हम हालत जंग में हैं, तो वो जो सलूक हमारे साथ करते हैं हम भी वही सलूक इनके साथ करेंगे, लिहाजा उस हर्बी की भी ना माल महफूज है और ना इसकी जान महफूज है। मालूम हुआ इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं तबायुन दार से इनकिताए विलायत होगा, विलायत मुनकते हो जाती है। क्या माना विलायत मुनकते होती है, यानी इंसान की अपनी जान और माल पर मिल्कियत खत्म हो जाती है, ना उसकी जान महफूज ना उसका माल महफूज। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तबायुन दार से जान और माल की हिफाजत तो खत्म हो गई लेकिन इससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो फरमाते हैं कि आप देखते नहीं कोई हर्बी अमान लेकर हमारे वतन में आता है तो उसका जान और माल महफूज है क्योंकि वो अमान लेकर आया है, और फिर ये हर्बी वापस जाता है अपने वतन तो देखो इसके निकाह पर कोई असर नहीं, जो पहले इसकी बीवी थी अब भी इसकी बीवी है, हालांकि तबायुन दार पाया गया था, वो हमारे वतन आया था, हमारे मुल्क में आया था। इसी तरह अगर मुसलमान जो है उनके मुल्क में जाता है अमान लेकर तो अब वो चूंकि अमान लेकर गया है उसका जान और माल महफूज है, और फिर ये मुसलमान वापस आता है वहां से तो उसका निकाह अब भी बरकरार है जी। अगर तबायुन दार से निकाह टूटता तो फिर हरबी मुस्तामिन का निकाह भी टूटना चाहिए था और मुस्लिम मुस्तामिन का निकाह भी टूटना चाहिए था। बात समझ में आ गई? तो वो फरमाते मालूम हुआ तबायुन दार का जुदाई में कोई असर नहीं, तबायुन दार की वजह से जुदाई नहीं आती, सिर्फ विलायत मुनकते होती है, इंसान अपनी जान और माल का मालिक नहीं रहता। तो लहू इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्न तबायुन असरहु फिन क़िताइल विलायति, कि जो तबायुन है इसका असर होता है विलायत के मुनकते होने में, इसमें विलायत मुनकते हो जाती है यानी अपनी जात और माल से मिल्कियत खत्म हो जाती है। या यूं कर लें विलायत, विलायत जो है वो हकूमत और रियासत को भी कहते हैं, हकूमत रियासत और इख्तदार को भी विलायत कहते हैं। तो तर्जमा यूं भी कर सकते हैं आप, लहू इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्न तबायुन असरहु फिन क़िताइल विलायति, कि जो तबायुन दार है इसका असर होता है इनकिताई विलायत में, यानी हकूमत और इख्तदार मुनकते हो जाता है। हरबी वहां से इधर आया तो यहां तो उनका इख्तदार मुनकते है भाई, या मुसलमान वहां जा गलती से चला गया तो वहां तो हमारा इख्तदार मुनकते है। तवज्जो है, इख्तदार और हकूमत हमारे मुनकते है, वहां हमारी हकूमत नहीं है और उनकी यहां पर हकूमत नहीं है। तो देखो तबायुन दार से सिर्फ विलायत और हकूमत मुनकते हो जाती है, यानी इंसान की फिर जान और माल महफूज नहीं रहते, क्योंकि मुसलमान वहां गलती से चला गया है तो वहां हमारी हकूमत नहीं है, अब उसका जान और माल महफूज नहीं, और वो यहां आते हैं तो यहां उनकी हकूमत नहीं है, लिहाजा अब उस हरबी की जान और माल महफूज नहीं। तो फरमाते हैं लहू इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्न तबायुन असरहु फिन क़िताइल विलायती, कि जो तबायुन दार होता है इसका असर जो है विलायत के मुनकते होने में होता है, वदालिका ला युअसिर फिल फुरकती, और ये जुदाई में मुअसिर नहीं, इसकी वजह से जुदाई पर असर नहीं पड़ता। कल हरबी इल मुस्तामिनी वल मुस्लिम इल मुस्तामिनी, जैसे कि हरबी मुस्तामिन और मुस्लिम मुस्तामिन, वो इसको कयास करते हैं, वो इसको कयास करते हैं उस मुसलमान पर जो अमान लेकर उनके मुल्क में जाता है, यानी मुस्लिम मुस्तामिन। देखो वो वहां से वापस आता है और उसके निकाह पर कोई असर नहीं, और इसी तरह हरबी मुस्तामिन, वो हरबी जो यहां अमान लेकर आया और फिर वापस जाता है उसके निकाह पर कोई असर नहीं। तो कहते हैं कल हरबी इल मुस्तामिनी वल मुस्लिम इल मुस्तामिनी, जैसे हरबी मुस्तामिन है और मुस्लिम मुस्तामिन है, इनमें तबायुन दार तो होता है लेकिन इनके निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता भाई। अम मसबियो, अब आगे अपनी दलील जिक्र कर रहे हैं कि देखो कैदी बनाना जो है इसकी वजह से निकाह पे असर पड़ेगा और निकाह टूट जाएगा। वो फरमाते हैं कि यह कैदी बनाना तकाजा करता है कि ये जिसको कैद किया गया है ये खालिस उस कैद करने वाले के लिए होना चाहिए। जी। याद रखो भाई, सबयुन सबायस्बी सबयन, सबायस्बी सबयन का माना है कैदी बनाना, कैद करना, और इससे इसमें फाइल आएगा साबी, क्या आएगा साबी, सबायस्बी सबयन फहुआ साबिन, वह सुबिया युस्बा सबियन फदा का मसबियुन, तो वो जिसको कैद किया गया है वो मसबियुन, इसमें मफूल भाई, वो मसबियुन है भाई, इसमें मफूल भाई, जिसको कैद किया गया है, तो इसमें फाइल क्या है साबी, कैद करने वाला, और जिसको कैद किया गया वो क्या है मसबियुन। ये लफ्ज जहन में बिठा लें, अब आगे बार बार मैं इस लफ्ज को जिक्र करूंगा तो आपके जहन में हो, कैद करने वाले को क्या कहते हैं साबी, और जिसको कैद किया गया है वो है मसबियुन भाई, मुजक्कर है तो मसबियुन और मुअन्नस है तो मसबियतुन भाई। अब देखिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं ये कैद तकाजा करती है कि ये जो कैदी है ये खालिस होना चाहिए साबी के लिए, कैद करने वाले के लिए, क्योंकि वो इसका मालिक बन गया है, उसको मिलकर रकबा हासिल हो रही है, तो यह माल खालिस उसके लिए होना चाहिए, और यह खालिस उसके लिए तभी हो सकता है जब इस निकाह के भी टूटने का हुक्म लगाया जाए। मियां बीवी में से फर्ज करो मसलन बीवी को कैद कर लिया है मुसलमानों ने, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है। वो फरमाते हैं ये कैदी बनाना तकाजा करता है कि ये कैदी खालिस साबी के लिए होना चाहिए। मसलन मुसलमानों का लश्कर गया था, वहां से बहुत से लोगों को कैद कर लिया, और फिर कदीम जमाने में जब लोगों को कैद किया जाता था तो उनको गुलाम और बांदियां बनाया जाता था, और जब मुसलमान माले गनीमत दारुल इस्लाम में ले आते और फिर आपस में तकसीम करते थे तो उसमें जो गुलाम और बांदियां होती थी वो भी उसी तरह तकसीम होते थे। तो अगर किसी मुसलमान के हिस्से में ये कैदी औरत आ गई, कौन आ गई? कैदी औरत, तो इस औरत को खालिस इस मुसलमान के लिए, इस साबी के लिए होना चाहिए। वो फरमाते हैं कैदी बनाना तकाजा करता है कि ये जो औरत है इसको खालिस किसके लिए होना चाहिए? साबी के लिए। और ये खालिस तभी हो सकती है जब आप कहें इस औरत का निकाह टूट गया है। अगर आप अब भी कहते हैं कि इसका निकाह वो जो दारुल हर्ब में इसका खावंद मौजूद है उसके साथ अभी भी इसका निकाह मौजूद है, फिर तो ये खालिस इस साबी के लिए ना हुई, इसमें तो खावंद का भी हक है, इसमें तो खावंद का भी हक है, तो साबी के लिए तो इसे सोहबत करना जायज ना होगा फिर भाई, अगर आप निकाह को बरकरार रखते हैं। जबकि कैदी बनाना क्या तकाजा करता है कि ये जो कैदी है इसको खालिस साबी के लिए होना चाहिए। चुनाचे वो फरमाते हैं कि ये निकाह मुनकते हो जाएगा, जुदाई आ जाएगी, ये खालिस ये औरत इस साबी के लिए हो गई। और नीस फरमाते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह कि इसीलिए तो इस कैदी पर अगर कोई दुयून थे तो वो दुयून भी साकित हो जाते हैं। मसलन ये औरत जो है दारुल हर्ब में कई लोगों का दैन इसके जिम्मे में था, तो बिल इतफाक इंदल अहनाफ भी ये दैन साकित हो गया और इंदल शवाफिया भी ये दैन साकित हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर इस औरत पर अभी भी दैन मौजूद है लोगों का तो फिर तो ये खालिस साबी के लिए ना हुई, इसमें तो और लोगों का भी हक आ गया भाई, तवज्जो है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो कैदी है खालिस होना चाहिए साबी के लिए, और खालिस इसी सूरत में हो सकता है जब इसके निकाह के भी टूटने का हुक्म लगाया जाए, और नीज इस पर जो दुयून है उनको भी साकित करार दिया जाए, फिर ही ये खालिस उस साबी के लिए हो जाएगा। इसके अंदर आप और किसी का हक नहीं है, खावन का हक भी नहीं, और वो जो कर्ज खा थे उनका भी कोई हक नहीं। अब ये खालिस हो गई साबी के लिए, अब वो चाहे इससे सोहबत करे क्योंकि खावन से निकाह टूट चुका है, और चाहे तो वो इसको बेच दे क्योंकि ये अब इसकी मिल्कियत बन चुकी है, ये इसको बेचना चाहे तो बेच भी सकता है, किसी और का इसमें कोई हक नहीं है। बात समझ में आ गई। अब देखिए भाई, कहते हैं अम्मा सबियू बाकी कैदी बनाना फयक तजी सफा आ, तो ये तकाजा करता है, सफा का माना है खालिस होना, सफा का माना है खालिस होना। तो कहते हैं अम्मा सबियू फयक तजी सफा आ, तो कैदी बनाना वो तकाजा करता है खालिस होने का, लिस साबी की, खालिस हो किसके लिए? कैद करने वाले के जरिए, ये कैदी कैद करने वाले के लिए होना चाहिए खालिस, किसी और का उसमें हक ना हो भाई। वला यतहक्कु इल्ला बिन किताइन निकाही, और ये खालिस होना तो साबित नहीं हो सकता मगर निकाह के टूटने से ही, निकाह के मुनकते होने से ही। अगर निकाह बरकरार है फिर तो खावंद का भी इसमें हक है, फिर तो ये खालिस साबी के लिए ना हुई भाई। तो कहते हैं वला यतहक्कु इल्ला बिन किताइन निकाही, और ये खालिस होना नहीं हो सकता मगर निकाह के टूटने के साथ ही। वलिहादा यस्कुतु दैनु अन जिम्मतिल मस्बी, और इसी वजह से मस्बी के जिम्मे से दैन भी साकित हो जाता है, जिसको कैदी बनाया गया है उसके जिम्मे से दैन भी इसीलिए साकित हो जाता है क्योंकि ये खालिस साबी के लिए तभी हो सकता है जब इस कैदी के जिम्मे दैन भी ना हो। अगर दैन है फिर तो कर्ज खाहों का भी इसमें हिस्सा आ गया, ये तो खालिस साबी के लिए ना होगा भाई। तो कहते हैं वलिहादा यस्कुतु दैनु अन जिम्मतिल मस्बी, और इसी वजह से दैन जो है वो कैदी के जिम्मे से साकित हो जाता है। वलाना, अब हमारी दलील आ गई, वलाना हमारी दलील ये है कि अन्नमात तबायुनी हकीकतं व हुक्मन ला यंतजिमुल मसालिहु फशाबहल महरमियता। अहनाफ कहते हैं कि तबायुन दार हकीकतन भी पाया जाए और हुक्मन भी पाया जाए। हकीकतन तबायुन दार का क्या माना? हकीकतन यानी दोनों का मुल्क अलग अलग है, और नीस हुक्मन भी दार अलग हो, यानी हुक्म भी लगाया जाए, ये कब होगा? जब वो दूसरे मुल्क में रहने का इरादा कर ले, अब वापसी का इरादा ना हो। तो अहनाफ कहते हैं जब तबायुन दार हकीकतन भी पाया जाए और हुक्मन भी पाया जाए तो अब निकाह की मसलहतों का इंतजाम नहीं हो सकता, अब निकाह की मसलहतें हासिल नहीं हो सकती। और आप पढ़ चुके हैं कि जो निकाह की शरीयत ने इजाजत दी है ये इस निकाह की अपनी जात की वजह से इजाजत नहीं दी, बल्कि निकाह के मकासिद और मसलहतों की वजह से इजाजत दी है। और निकाह के मकासिद क्या हैं? कि इसके जरिए एक नया घर आबाद किया जाता है और उसके जरिए शहवत का इलाज भी होगा और नीज उसके जरिए मियां बीवी को औलाद भी हासिल होगी, फिर उस औलाद की तरबियत भी इनको करना पड़ेगी और नीज इसी तरह घर का ये इंतजाम चलाएंगे और इसी तरह खानदान बढ़ेगा। तो ये सब निकाह के मकासिद हैं। ये क्या हैं? घर का इंतजाम चलाना, औलाद का हासिल होना, शहवत का इलाज करना, खानदान का बढ़ना, ये सब क्या है? निकाह के मकासिद हैं। लेकिन जब मियां बीवी दो अलग अलग मुल्कों में हैं और वहीं इनका रहने का ही इरादा है तो अब निकाह की ये मसलहतें तो हासिल नहीं हो सकती। अब निकाह की ये वाली मसलहतें तो हासिल नहीं हो सकती, दोनों अलग अलग मुल्क में हैं और वहीं अपने अपने मुल्क में रहने का उनका इरादा है भाई। तो लिहाजा मालूम हुआ तबायुन दार हकीकतन भी पाया जाए और हुक्मन भी पाया जाए तो यह निकाह की मसलहतों के मुनाफी है। यानी यह तबायुन हकीकतन और हुक्मन भी हो और निकाह की मसलहतें हासिल हो जाएं, यह मुमकिन ही नहीं है। इन दोनों में मुनाफात है। इन दोनों में मालूम हुआ तबायुन दार हकीकतन और हुक्मन हो तो यह निकाह के मुनाफी है, तो यह महरमियत के मुशाबे हो गया। जैसे महरम होना निकाह के मुनाफी है, महरम होना निकाह के मुनाफी है। अगर कोई शख्स किसी का महरम है तो वहां निकाह की कोई सूरत नहीं है, महरमियत निकाह के मुनाफी है। इसी तरह ये जो तबायुन दार है ये भी महरमियत की तरह हो गया। किस चीज में? निकाह के मुनाफी होने में, निकाह के मुनाफी होने में। महरमियत भी क्या है? निकाह के मुनाफी है। महरमियत के होते हुए निकाह की कोई गुंजाइश नहीं। इसी तरह तबायुन दार भी क्या हुआ? मुनाफिये निकाह हो गया। तो लिहाजा जब यह तबायुन दार हकीकतन और हुक्मन निकाह के मुनाफी हुआ तो यहां पर खुद ब खुद जुदाई आ जाएगी। जैसे महरमियत के अंदर निकाह की कोई सूरत नहीं है, अगर पहले से महरमियत है तो निकाह हो ही नहीं सकता, और अगर महरमियत बाद में आई है तो महरमियत के आते ही खुद बखुद निकाह खत्म हो जाता है। मसलन एक शख्स ने एक सगीरा से निकाह किया, उसके वली ने निकाह करवा दिया और यह सगीरा मसलन 2 साल से कम इसकी उम्र है और इस सगीरा को एक औरत ने दूध पिलाया, एक ऐसी औरत ने दूध पिलाया जिसने इसी के खावंद को भी बचपन में दूध पिलाया था। तो देखो अब ये दोनों आपस में रिजाई भाई बहन बन गए, दोनों में महरमियत आ गई। इब्तिदाई निकाह में तो महरम नहीं थे लेकिन अब क्या बन चुके? एक दूसरे के महरम। और जैसे ही महरमियत आई साथ ही निकाह खत्म हो गया। तो जैसे महरमियत निकाह के मुनाफी है, महरमियत आते ही निकाह खत्म हो जाता है, इसी तरह तबायुन दार भी निकाह के मुनाफी है। तबायुन दार हकीकतन और हुक्मन आएगा तो साथ ही निकाह खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके साथ निकाह की मसलहतें हासिल नहीं हो सकती भाई। तो कहते हैं वलाना और हमारी दलील यह है कि नमात तबायुनी हकीकतन व हुक्मन के हकीकतन और हुक्मन तबायुन के साथ लायन तजिमुल मसालिह निकाह की मसलहतों का इंतजाम नहीं हो सकता। फशा बहल महरमियत तो ये तबायुन दार महरम होने के मुशाबे हो गया। वह सब यूजिबु मिलकर रकबती वह युनाफी निकाह तिदा अनफकदा लिका बका आ। अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील का जवाब दे रहे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि कैदी बनाना यह इल्लत है जुदाई की, तो उसको जवाब दे रहे हैं कि भाई कैदी बनाने से मिलकर रकबा हासिल होती है। किसी हरबी या हरबिया को जब इंसान कैदी बनाता है तो उसको मिलकर रकबा हासिल हो जाती है, वो उसका मालिक बन जाता है, लेकिन उससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए क्योंकि मिलकर रकबा इब्तिदाअन निकाह के मुनाफी नहीं है तो बकाअन भी निकाह के मुनाफी नहीं होगी। मसलन एक आदमी है, उसका गुलाम है या उसकी बांदी है, वो इनका जहां चाहे निकाह करवा सकता है। अब इस आदमी को मिलकर रकबा हासिल है, ये गुलाम या बांदी का मालिक है और निकाह करवा रहा है, तो मिलकर रकबा के होते हुए इब्तिदाई निकाह हो रही है और ये जायज है। मालूम हुआ मिलकर रकबा इब्तिदाई निकाह के मुनाफी नहीं। जब मिलकर रकबा इब्तिदाई निकाह के मुनाफी नहीं है तो बकाए निकाह के भी मुनाफी नहीं होगी। मसलन आपने एक हरबिया को कैद कर लिया और वो मनकूहा है, उसका निकाह हो चुका है। आप मुसलमानों ने जब इसको कैद किया तो क्या हासिल हुई मुसलमानों को? मिलके रकबा। और ये मिलके रकबा किस पर आई? इब्तिदाई निकाह पर या बकाए निकाह पर? बकाए निकाह पर। इब्तिदाई निकाह तो पहले हो चुका था भाई, तो जब मिलके रकबा इब्तिदाई निकाह के मुनाफी नहीं, मिलके रकबा के होते हुए इब्तिदाई निकाह हो सकती है, तो मिलके रकबा के होते हुए बकाए निकाह भी हो सकती है। निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आप बेशक कैदी बना लें, क्योंकि मिलके रकबा निकाह के मुनाफी नहीं है। तो कहते हैं वह सब यूजिबू मिलकर रकबती, और कैदी बनाना यूजिबू अयुस भी तू, और कैदी बनाना यह साबित करता है मिलकर रकबती, मिलकर रकबा को, कि वो कैदी बनाने वाला मालिक बन जाता है उसकी जात का। वह वला युनाफी निकाह इब्तिदा अन, और मिलकर रकबा यह तो मुनाफी निकाह नहीं है इब्तिदा अन, इब्तिदा के एतबार से। फकजा लिखा बकान, तो इसी तरह बकान भी होगा, यानी बकान भी मिलकर रकबा निकाह के मुनाफी नहीं होगी। फसारा का शिराई, तो ये शिरा की तरह हो गई भाई, ये कैदी बनाना ये शिरा की तरह हो गया। जैसे मसलन कोई आका जो है वो बांदी को खरीदता है और वो बांदी पहले से मनकूहा है, तो इस आका को खरीदने की वजह से मिलकर रकबा तो हासिल हो रही है, लेकिन इससे उस बांदी के निकाह पर कोई असर नहीं पड़ रहा, वो बांदी अब भी मनकूहा है, और लिहाजा आका के लिए इसके साथ सोहबत जायज नहीं है भाई, क्योंकि ये गैर की मनकूहा है भाई। तवज्जो है? तो जैसे खरीदने से इंसान को मिलकर रकबा हासिल होती है लेकिन निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता, इसी तरह कैदी बनाने से भी कैद करने वाले के लिए मिलकर रकबा तो साबित हो जाएगी लेकिन उससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं फसारा का शिराई, तो ये कैदी बनाना खरीदने की तरह हुआ। सुम हुआ यक्तजी सफा अफी महल अमली ही वह मालू लाफी महल निकाह। जी इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि जब कैदी किसी को बनाया जाता है तो ये तकाजा करता है कि वो कैदी खालिस साबी के लिए होना चाहिए जी। वो कैदी खालिस कैद करने वाले के लिए होना चाहिए। तो हम उसका जवाब देते हैं कि हां, किसी को जब कैदी बनाया जाए तो यह तकाजा करता है कि इस कैदी को खालिस साबी यानी कैद करने वाले के लिए होना चाहिए। लेकिन यह खालिस होना माल होने के एतबार से होगा। किस एतबार से? माल होने के एतबार से, यानी यह माल खालिस साबी के लिए हो जाएगा, किसी और का इस माल में हक नहीं। तवज्जो है? लेकिन निकाह के अंदर कोई असर नहीं पड़ेगा, निकाह उसी तरह रहेगा। तो ये जो कैदी है, ये जो कैद किया गया, इसमें दो हैसियतें हैं। एक एतबार से देखा जाए तो ये माल है और इस एतबार से साबी इसका मालिक बन गया और इस माल के अंदर अब और किसी का हक नहीं। हत्ता कि अगर औरों के दुयून थे इसके ऊपर, वो दुयून भी साकित हो गए, क्योंकि अगर वो दुयून इसके ऊपर रहेंगे फिर तो ये खालिस साबी के लिए ना होगा, इसमें तो औरों के भी हुकूक आ जाएंगे। जबकि ये जो कैदी है इसने निकाह किया हुआ है और निकाह करना ये इंसान की खसूसियात में से है। तवज्जो है? तो आका जो अपने गुलाम का मालिक होता है वो उसके माल होने की हैसियत से मालिक होता है, उसके इंसान होने की हैसियत से उसका मालिक नहीं होता। और निकाह की जो शरीयत इजाजत देती है वो तो इंसान होने के एतबार से है भाई, इंसान की खसूसियत है कि वो निकाह करता है भाई। तो ये निकाह किसके खसूसियत में से? इंसान के खसूसियतों में से है। तो जो आका है वो गुलाम या बांदी का मालिक होता है उसके माल होने के एतबार से, न कि उसके इंसान होने के एतबार से। और ये जो निकाह की इजाजत है ये किस एतबार से होती है? ये इंसान होने के एतबार से होती है उस गुलाम या बांदी को, माल होने के एतबार से नहीं। तो यहां पर भी बात यह चल रही थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कैदी बनाना तकाजा करता है कि यह कैदी खालिस साबी के लिए होना चाहिए। हम कहते हैं कि आपकी बात ठीक है, कैदी बनाना यही तकाजा करता है, लेकिन यह सिर्फ माल होने के एतबार से इसमें अमल करेगा, निकाह के एतबार से अमल नहीं करेगा। माल होने के एतबार से यह खालिस साबी के लिए हो जाएगा, निकाह के एतबार से यह खालिस साबी के लिए नहीं, क्योंकि इसका निकाह जो है वह माल होने के एतबार से नहीं है बल्कि इंसान होने के एतबार से है, और उस एतबार से तो वो कैद करने वाला उसका मालिक नहीं है। तवज्जो है। तो कहते हैं सुम्म हुआ यक्तजी सफाआ, फिर ये कैदी बनाना तकाजा करता है असफाआ के वो कैदी खालिस होना चाहिए। तो ये खालिस होना जो है फी महल अमल ही, ये उसके महल अमल में होगा। ये कैदी बनाना तकाजा करता है कि ये कैदी खालिस होना चाहिए साबी के लिए, लेकिन ये अपने महल अमल के अंदर उसको खालिस करेगा। ये कैदी बनाना अपने महल अमल, यानी जहां पर ये कैदी बनाना अपना असर भी डाले, और कैदी बनाना असर डाल रहा है माल होने के एतबार से, निकाह के एतबार से असर नहीं डाल रहा। तो माल होने के एतबार से इस कैदी बनाने ने अपना असर दिखाया और ये सारा माल खालिस साबी के लिए हो गया। अगर इस पर किसी के दुयून वगैरह हैं वो भी सारे साकित हो गए, लेकिन मिलके निकाह के अंदर इसने कोई असर नहीं डाला, मिलके निकाह उसी तरह मौजूद है। तवज्जो है। तो कैदी बनाना तकाजा करता है कि ये चीज खालिस साबी के लिए होनी चाहिए, लेकिन किस एतबार से? माल होने के एतबार से, न के निकाह के एतबार से। तो कहते हैं सुम हुआ यक्तजी सफा, फिर ये कैदी बनाना तकाजा करता है खालिस होने का फी महल अमल ही, अपने महल अमल में। कैदी बनाना अपने महल अमल में इसके खालिस होने का तकाजा करता है। वह हुआ माल, और इसका महल अमल क्या है? कैदी बनाना किस में अमल करता है? माल के अंदर। भाई तो वह हुआ माल, तो वो माल है। ला फी महल निकाह, ना के महल निकाह होने में वो अपना असर नहीं करता भाई। तो लिहाजा निकाह उसी तरह बरकरार रहेगा जैसे शिरा के अंदर निकाह बरकरार रहता था, तो उस कैदी बनाने में भी निकाह बरकरार रहेगा भाई। वफिल मुस्तामिनी लम यतबायनी दार हुक्मन लिकस्दिहि रुजूअ, भाई इमाम शाफी हमारा फरमाते थे कि तबायुने दार से जुदाई नहीं आती, तबायुने दार से जुदाई नहीं आती। जैसे हरबिया मुस्तामिन यहां आता है और फिर वापस चला जाता है, उसका निकाह बरकरार है, या मुस्लिम मुस्तामिन वहां चला गया और फिर वापस आ गया और उसका निकाह बरकरार है, मालूम है तबायुने दार से निकाह पर असर नहीं पड़ता। तो हम उसका जवाब देते हैं कि तबायुने दार हकीकतन भी हो और हुक्मन भी हो, फिर जुदाई आती है, जबकि हरबिया मुस्तामिन वो तो अमान लेकर आया है, उसने तो वापस जाना है, उसका यहां ठहरने का इरादा नहीं। इसी तरह मुस्लिम मुस्तामिन वो अमान लेकर वहां गया है, उसका वहां रहने का इरादा नहीं, वो तो वापस आएगा। तो तबायुने दार सिर्फ हकीकतन है यहां पर, हुक्मन नहीं। तवज्जो है। तबायुने दार हकीकतन भी हो और हुक्मन भी हो, फिर जुदाई आती है, लेकिन यहां तो हरबिया मुस्तामिन और मुस्लिम मुस्तामिन के अंदर सिर्फ तबायुने दार हकीकतन है, हुक्मान नहीं, इसलिए जुदाई नहीं आएगी भाई। कहते हैं वफिल मुस्तामिनी, और वो मुस्तामिन जो है उसके अंदर लम यतबायनी दार हुक्मन, वहां पर हुक्मन दार मुतबायन नहीं है, लिकस्दिही रुजूआ, इसलिए क्योंकि उसका वापसी का इरादा है। तो तबायुने दार सिर्फ हकीकतन है, हुक्मान नहीं, लिहाजा वहां जुदाई नहीं आएगी भाई। मसला समझ में आ गया। आगे देखिए व इदा खरजत المرأة إلينا مهاجرة جاز أن تتزوج ولا عدة عليها। अब यही मसला दोबारा जिक्र कर रहे हैं कि कोई शख्स दारुल हर्ब से हिजरत करके दारुल इस्लाम में आ जाए। तो पहले जो मसला जिक्र किया था वो था जुदाई के बारे में, उसमें जुदाई बयान की थी कि कोई मुसलमान होकर हिजरत करके आ गया और यहीं रहने का इरादा है मियां बीवी में से एक का, तो फिर जुदाई आ जाएगी। आप जिक्र कर रहे हैं कि इस सूरत में औरत पर इद्दत वाजिब होगी या नहीं। अगर हिजरत करके आने वाली औरत है और उसका यहीं रहने का इरादा है तो जुदाई तो आ जाएगी, हमने ऊपर बयान कर दिया। लेकिन क्या इस औरत पर इद्दत भी वाजिब होगी या नहीं, तो अब वो मसला जिक्र कर रहे हैं, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इदा खरजतिल मरअतु इलैना मुहाजिरतन, और जब कोई औरत निकल आई हमारी तरफ हिजरत करते हुए, जाज अंत तज़व्वज वला इद्दत अलैहा इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, तो जायज है कि यह औरत निकाह कर ले और इस पर कोई इद्दत नहीं है इमाम साहब के नजदीक, चाहे हिजरत करके आने वाली जिम्मिया हो चाहे मुसलमान हो, जो भी औरत वहां से हिजरत करके आई है और यहीं रहने का इरादा है तो जुदाई आ गई, तबाही उन्हें दार हकीकतन भी पाया गया और हुक्मन भी, और नीज इन पर इद्दत भी नहीं है, जिम्मिया है। जिम्मिया वो तो इस्लामी अहकाम वैसे ही नहीं मानती, इस्लामी अहकाम उन पर अमल नहीं करती, उस पर भी इद्दत नहीं, और मुसलमान औरत उस पर भी इद्दत नहीं आएगी। तो कहते हैं जाज अंत तज़व्वज वला इद्दत अलैहा, जायज है कि वो औरत निकाह कर ले और उस पर कोई इद्दत नहीं इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह इमाम साहब के नजदीक। वकाला अलैहा इद्दत, और साहिबैन फरमाते हैं इस औरत पर इद्दत है, चाहे जिम्मिया है चाहे मुसलमान औरत है, इस पर इद्दत है भाई। दलील जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं लिअन्न अल-फुरक़त वक़अत बाद अद-दुखूल फी दारिल इस्लामी, इसलिए क्योंकि ये जुदाई वाकई हुई है दारुल इस्लाम में दाखिल होने के बाद। ये जुदाई कब आई है? दारुल इस्लाम में दाखिल होने के बाद, और जुदाई के बाद औरत पर क्या वाजिब है शरअन? इद्दत वाजिब है, लिहाजा इन पर भी इद्दत वाजिब होगी, उससे पहले यह निकाह नहीं कर सकती। तो कहते हैं लिअन्न अल-फुरक़त वक़अत बाद अद-दुखूल फी दारिल इस्लामी, इसलिए क्योंकि यह जुदाई दारुल इस्लाम में दाखिल होने के बाद वाकई हुई है। फ़यल्ज़मुहा हुक्मुल इस्लामी, लिहाजा इस औरत पर इस्लामी हुक्म लाजिम होगा। मुसलमान औरत पर तो लाजिम होगा क्योंकि वह इस्लाम कबूल कर चुकी है, साहिबैन की दलील चल रही है। मुसलमान औरत दारुल हर्ब से इधर आई, जुदाई आ गई, और जुदाई के बाद आप क्या गुजारेगी? इद्दत गुजारेगी। और जो जिम्मिया है उसका यहां रहने का इरादा है, वो जिम्मिया बन गई, तो उस पर भी इद्दत वाजिब है। क्यों? क्योंकि साहिबैन का मसहब आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जो भी इत्तेफाकी मसला होता है वो जिम्मियों पर लाजिम होता है, और औरत पर इद्दत भी तमाम फुकहा के नजदीक इत्तेफाकी मसला है कि तलाक के बाद, जुदाई के बाद औरत पर इद्दत वाजिब होती है, तो ये उस जिम्मिया पर भी वाजिब होगा। हां, वो गुजारे या ना गुजारे वो उसकी मर्जी है, इसलिए क्योंकि हमें उनसे तारुस से मना किया गया है। तवज्जो है, साहिबैन क्या फरमाते हैं कि इत्तेफाकी मसला उन पर लाजिम है, लेकिन अगर वो नहीं भी करते तो हम दखल नहीं देंगे। तो यहां पर भी जिम्मिया पर इद्दत लाजिम है, लेकिन अगर वो ना गुजारे तो उसमें हम दखल नहीं देंगे, जबकि मुसलमान औरत उस पर तो शरी अहकाम लाजिम है, उसको इद्दत जरूर गुजारना पड़ेगी। तो कहते हैं फयल जमुहा हुक्मुल इस्लामी, तो इस औरत पर इस्लाम का हुक्म लाजिम होगा। वली अबी हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम साहब क्या फरमाते हैं कि चाहे जिम्मिया आए चाहे मुसलमान औरत हिजरत करके आए, कोई इद्दत नहीं है, जुदाई हो गई, अब फौरन निकाह कर सकती है। वली अबी हनीफा रहमहुल्लाह, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहा असरुन निकाहिल मुतकद्दिमी, कि ये जो इद्दत होती है ये माकबल के जो निकाह है उसका असर होता है। वजबत इजहारन लिखतरिही, और ये इद्दत वाजिब होती है उस निकाह के एहतराम को जाहिर करने के लिए। ये औरत पर जो शरीयत ने इद्दत वाजिब की है ये किस लिए है? माकबल वाले ये निकाह का असर है, माकबल वाले निकाह के एहतराम को जाहिर करने के लिए। तवज्जो है, वो जो खावंद की मिल्कियत थी उसके एहतराम को जाहिर करने के लिए इद्दत वाजिब की जाती है। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम साहब फरमाते हैं अन्नहा असरुन निकाहिल मुतकद्दिमी, कि ये जो इद्दत होती है ये निकाह मुतकद्दिम का असर होता है, यानी माकबल में जो निकाह था उसका असर होता है। वजबत इजहारन लिखतरिही, और ये इद्दत वाजिब होती है उस निकाह की अजमत को जाहिर करने के लिए, उसकी इज्जत और एहतराम को जाहिर करने के लिए। वला खतरा लिमिल्किल हर्बी, और हर्बी की मिल्कियत का तो कोई एहतराम नहीं, खरबी के माल का तो कोई एहतराम नहीं, वो तो मुसलमानों के हाथ आ गया, मुसलमान उसके मालिक बन जाते हैं, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वला खतर अल मिल्क अल हर्बी, ये और हर्बी की मिल्कियत का तो कोई एहतराम नहीं है। वलिहादा ला तजिबुल इद्दतु अलल मस्बियति, और इसीलिए मस्बिया पर भी इद्दत वाजिब नहीं होती। जिस औरत को कैदी बनाया था उस पर भी इद्दत वाजिब नहीं हुई थी, हमने ऊपर मसला जिक्र किया था, क्योंकि उसका खावंद हर्बी है और हर्बी की मिल्कियत का कोई एहतराम नहीं, तो लिहाजा उसके निकाह की वजह से इद्दत भी नहीं वाजिब होगी। तो यहां पर जो हिजरत करके आई है मुसलमान औरत, उस पर भी कोई इद्दत नहीं है इमाम साहिब के नजदीक। भाई आगे देखिए, वह इनकानत हामिलन लम ततजव्वज हत्ता तज़अ हमलहा। सूरत मसला ये, दारुल हर्ब से एक औरत हिजरत करके दारुल इस्लाम आ गई और ये हामिला है। क्या है? हामिला है। तो क्या अब ये निकाह कर सकती है या निकाह नहीं कर सकती? यहां आते ही निकाह तो टूट गया, जुदाई तो आ गई, क्या अब ये निकाह कर सकती है या नहीं? तो हमारे अइमा फरमाते हैं कि अगर ये हामिला है फिर ये निकाह नहीं कर सकती, वज़ए हमल के बाद इसको निकाह की इजाजत होगी। तो कहते हैं वह इन कानत हामिलन, और अगर ये औरत जिसने हिजरत की है अगर ये हामिला है, लम ततजव्वज, तो ये निकाह नहीं कर सकती, हत्ता तज़अ हमलहा, यहां तक कि अपने हमल को जन्म दे दे। वज़ए हमल का क्या माना है? हमल को जन्म देना। हत्ता तज़अ हमलहा, यहां तक कि ये अपने हमल को जन्म दे दे। वअन अबी हनीफा रहमहुल्लाह। अच्छा, अब एक और रिवायत भी जिक्र कर रहे हैं, मतन में तो बता दिया कि ये जो औरत जो हामिला है ये आगे इसमें जुदाई आ गई, दारुल इस्लाम हिजरत करके आ गई तो जुदाई तो आ गई, लेकिन जब तक हमल को जन्म नहीं देती ये आगे निकाह नहीं कर सकती। जबकि इमाम साहब से एक रिवायत ये भी है कि ये निकाह कर सकती है, निकाह कर ले लेकिन खावंद सोहबत न करे, जब वज़ए हमल हो जाए फिर उसके बाद सोहबत कर सकता है खावंद। तो कहते हैं वअन अबी हनीफा रहिमहुल्ला, और इमाम साहिब से एक रिवायत यह भी है कि अन्नहु यसिहुन निकाहु, कि इसका निकाह सही है, यह हामिला भी निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकती है, लेकिन वला यकरबुहा ज़ौजुहा, लेकिन इसका खावंद इसके साथ सोहबत न करे। करीब यकरबु करबं व कुर्बानन, करीब यकरबु करबं व कुर्बानन का माना सोहबत करना। तो कहते हैं अन्नहु यसिहुन निकाहु, के निकाह सहीह है, वला यकरबुहा ज़ौजुहा, और खावन इसके साथ सोहबत न करे, हत्ता तज़अ हमलहा, यहां तक कि अपने हमल को जन्म दे दे, कमा फिल हुबला मिन ज़िना, जैसे कि उस औरत में था जो जिना से हामिला हो। हुबला किसे कहते हैं? हामिला। जो जिना से हामिला है उसका मसला पीछे गुजर चुका है, वो जहां मुहर्रमात का बयान आ रहा था जिन औरतों से निकाह हराम है, वहां साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया था, अगर एक औरत हामिला है तो फिर देखा जाएगा यह हमल साबितुन नसब है या साबितुन नसब नहीं है। अगर यह हमल साबितुन नसब है, यानी यह औरत इद्दत गुजार रही है और इद्दत के अंदर औरत बच्चे को जन्म दे तो वो उसी खावंद का शुमार होता है, तो अगर औरत हामिला है और वह हमल साबितुन नसब है फिर वहां निकाह की इजाजत नहीं, वरना तो क्या खराबी लाजिम आएगी? जमा बैनल फिराशैन लाजिम आएगा, जमा बैनल फिराशैन, क्योंकि खावन ने तलाक दे दी है लेकिन औरत हामिला है, और जब यह औरत इस बच्चे को जन्म देगी तो इस बच्चे का नसब खावन से साबित हो जाएगा, और खावन से तो नसब तभी साबित हो सकता है जब यह औरत उस खावन की फिराश हो। मालूम हुआ अभी भी यह फिराश है, जब यह हामिला है तो अभी भी खावन का फिराश है। मैंने बताया था फिराश किसे कहते हैं? किसी औरत का किसी शख्स के बच्चों को जन्म देने के लिए मुतय्यन होना, यह जो बीवी होती है यह खावन का फिराश है, यह जो भी बच्चे जन्म देगी वह उसी खावन के शुमार होंगे। तो बीवी क्या है? खावन का फिराश। तो खावन अगरचे तलाक दे चुका है लेकिन अभी भी यह औरत हामिला है और इसके बच्चे का नसब इसके खावन से साबित हो जाएगा, मालूम हुआ यह अभी भी खावन का फिराश है। तो अगर आगे इसको निकाह की इजाजत दे दी जाए फिर तो यह दूसरे खावन का भी फिराश बन जाएगी, और ऐसा नहीं हो सकता कि एक औरत दो आदमियों का फिराश हो। तवज्जो है। लिहाजा इसलिए जब बच्चे का नसब साबित हो तो इस सूरत में हामिला आगे निकाह नहीं कर सकती, और अगर बच्चा साबितुन नसब नहीं है, मसलन औरत जिना से हामिला हुई है तो फिर इस सूरत में तो यह किसी का फिराश नहीं है, किसी का फिराश नहीं। लिहाजा औरत निकाह कर सकती है, लेकिन बहरहाल निकाह तो जायज है, लेकिन खावंद के लिए इससे सोहबत जायज नहीं जब तक ये बच्चे को जन्म न देते। तो यहां पर भी इसी तरह है, औरत हिजरत करके आई है और हामिला है, तो मतन में तो बतला दिया इसके लिए निकाह भी जायज नहीं, निकाह भी जायज नहीं। क्यों नहीं जायज? क्योंकि इसके पेट में जो बच्चा है वो तो खावंद का है और खावंद से तो उसका नसब साबित होगा, तवज्जो है। तो लिहाजा जब नसब साबित है तो लिहाजा अब किसी दूसरे को इजाजत नहीं होगी, वरना तो जमा बैनल फिराशैन की खराबी लाजिम आएगी, एक ही औरत दो मर्दों के लिए फिराश बन जाएगी, तवज्जो है। लेकिन इमाम साहब की एक रिवायत यह है कि यह औरत निकाह कर सकती है, अलबत्ता खावंद सोहबत न करे, जैसे वो औरत जो जिना से हामिला हुई थी जैसे उसको निकाह की इजाजत थी, अलबत्ता खावंद सोहबत नहीं कर सकता। तो यहां भी इस हामिला को निकाह की इजाजत होगी, लेकिन वज़ए हमल तक खावंद सोहबत नहीं कर सकता। ये एक रिवायत है इमाम साहब की। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वह इन कानत हामिलन लम तज़व्वज हत्ता तज़ा हमलहा, और अगर यह औरत जिसने हिजरत की है यह अगर हामिला है तो यह निकाह नहीं कर सकती यहां तक कि अपने हमल को जन्म दे दे। वान अभी हनीफत रहमला अन्नहु यसिहुन निकाह, और इमाम साहब से एक रिवायत यह है कि इसका निकाह सही है। वला यक़रबुहा ज़ौजुहा हत्ता तज़ा हमलहा, और इसका खावंद इसे सोहबत नहीं कर सकता यहां तक कि हमल को जन्म दे दे। कमा फिल हुबला मिन ज़िना, जैसे कि वह औरत जो ज़िना से हामिला थी, जैसे उसके मसले में था। वज अव्वली, पहले कौल की वजह यह है, वो जो मतन में आया कि निकाह भी नहीं कर सकती, निकाह भी वजहुल अव्वली, तो उस पहले कौल की वजह यह है कि अन्नहु साबितुन नसबी, कि ये जो हमल है ये साबितुन नसब है, इसका नसब साबित है। फैदा जहरल फिराश फी हकिन नसबी, तो जब इस औरत का फिराश होना जाहिर हो गया नसब के हक में, नसब तो तभी साबित हो सकता है ना जब यह औरत किसी की फिराश है, किसी के मनकूहा है, वैसे तो नसब साबित। तो जब नसब के एतबार से इसका फिराश होना जाहिर हो रहा है तो मनए निकाह के सिलसिले में भी इसका फिराश होना जाहिर करार दिया जाएगा। मनए निकाह के, निकाह मना है, क्यों? फिराश होने के एतबार से, ये मर्द का भी फिराश है, तवज्जो है। जब नसब के एतबार से इसका फिराश होना जाहिर है तो निकाह से रोकने में भी इसका फिराश होना जाहिर होगा और निकाह से रोका जाएगा कि यह निकाह नहीं कर सकती। तो कहते हैं वजहुल अव्वली, पहले कौल की वजह यह है कि अन्नहु साबितुन नसबी, की ये जो हमल है यह साबितुन नसब है। फैदा जहरल फिराश फी हक नसबी, तो जब इस औरत का फिराश होना जाहिर हो गया नसब के हक में। यज़हरु फी हक मनअ मिनन निकाही, तो निकाह से मना के हक में भी इसका फिराश होना जाहिर होगा। एहतियातन, बतौर एहतियात के, एहतियात इसी में है कि इसे निकाह न किया जाए भाई, वरना क्या खराबी लाजिम आएगी जमा बैनल फिराशैन की। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, काल अब इधर तद अहदु ज़ौजैन अनिल इस्लामी वक़अतिल फ़ुरक़तु बिग़ैरि तलाक, भाई मियां बीवी में से अगर कोई एक मुर्तद हो जाए तो फिर निकाह का क्या हुक्म है, अब वो बयान करने लगे हैं। पहले तो क्या जिक्र किया था, मियां बीवी में से अगर कोई मुसलमान हो जाए तो फिर निकाह का क्या हुक्म है, अब बयान करने लगे हैं मियां बीवी मुसलमान थे और अल अयाज बिल्लाह उन दोनों में से कोई एक मुर्तद हो गया तो अब उसका हुक्म बयान कर रहे हैं, तवज्जो है। कहते हैं काला, साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वह इधर तद अहदु ज़ौजैन अनिल इस्लामी, जब मियां बीवी में से कोई एक जो है वो इस्लाम से मुर्तद हो जाए, वक़अतिल फ़ुरक़तु बिग़ैरि तलाक़िन, तो जुदाई वाक़े हो जाएगी बगैर तलाक के। ये जो जुदाई है इसको तलाक शुमार नहीं करेंगे, चाहे मुर्तद होने वाला खावंद ही क्यों ना हो। जब खावंद मुर्तद हुआ है तो जुदाई किसकी तरफ से आई, खावंद की तरफ से, लेकिन फिर भी इसको तलाक नहीं करार देंगे, बल्कि यह फस्खे निकाह है। चाहे औरत मुर्तदा हो चाहे खावंद मुर्तद हो, यह जो जुदाई आई है यह फस्खे निकाह है। और मैंने बतलाया इसका फायदा क्या है, अगर बाद में यह मुसलमान हो जाता है और फिर निकाह करता है उसी औरत से, तो माकबल में फस्खे निकाह हुआ था, तलाक नहीं थी, लिहाजा अब भी इसको तीन तलाकों ही का हक हासिल होगा। तो कहते हैं ये जुदाई बगैर तलाक के होगी। वहादा इंदा अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह, और ये इमाम साहेब और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक है, यानी शेखैन ये फरमाते हैं कि ये जुदाई बगैर तलाक के है, ये फस्खे निकाह है। वकाल मोहम्मद रहिमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इन कानती रिद्दतु मिनज़्ज़ौजी, अगर ये मुर्तद होना खावंद की तरफ से है, फहिया फुरकतुन बितलाकिन, तो ये जुदाई तलाक के साथ है। इसको फिर तलाक शुमार करेंगे। अगर जुदाई किसकी तरफ से आई, खावंद की तरफ से, खावंद मुर्तद हुआ है। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, हुआ या तबीरु बिल इबाई, वो इसको कियास करते हैं इबा पर, यानी इनकार पर। जैसे पीछे मसला गुजरा, मियां बीवी में से बीवी मुसलमान हो गई, तो काजी खावंद पर इस्लाम पेश करेगा, और खावंद अगर इनकार कर देता है तो ये इनकार अनिल इस्लाम, ये इबा अनिल इस्लाम, ये किसकी तरफ से हुआ, खावन की तरफ से। तो ये हमारे नजदीक तलाक के हुक्म में है। किसके हुक्म में, तलाक। तो यहां पर भी ये जो जुदाई आई है, अगर मुर्तद खावंद हुआ है तो जुदाई खावंद की तरफ से आई है, तो इसको भी वो तलाक शुमार करते हैं। मालूम हुआ वो इर्तिदाद को किस पर कयास करते हैं, इनकार अनिल इस्लाम पर। इर्तिदाद को इनकार अनिल इस्लाम पर कयास करते हैं, और इनकार अनिल इस्लाम खावंद की तरफ से हो तो यह तलाक शुमार होता है। तो इर्तिदाद भी अगर खावंद की तरफ से हो तो यह तलाक शुमार होगा। तो वकाल मोहम्मद रहमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इनकानती रिद्दतु मिनज़्ज़ौजी, अगर ये मुर्तद होना खावन की तरफ से है, फहिया फुरकतुम भी तलाकिन, तो ये तलाक के साथ जुदाई है। हुआ तबीरु बिल इबाई, वो इसको कियास करते हैं खावन के इनकार अनिल इस्लाम पर। वल जामिउ मा बैन ना हु, और दोनों के अंदर जो इल्लत जामिया है वो है जो हमने बयान कर दी। इल्लत जामिया क्या, कि जुदाई खावंद की तरफ से आ रही है। दोनों मसलों में जब एक जगह पर खावंद की तरफ से आने वाली जुदाई को आपने तलाक करार दिया है, तो यहां भी उसको तलाक ही करार देंगे। तो कहते हैं वल जामिउ मा बैन्ना हु, और इल्लत जामिया वो है जो हमने बयान कर दी। व अबू यूसुफ रहमहुल्लाह मर्रा अला मा असलना लहू फिल इबाई, कहते हैं इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह भी यहां पर अपनी असल और अपने जाब्ते पर ही चले हैं। इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह का क्या जाब्ता था, उन्होंने पीछे जिक्र किया था कि वो जुदाई जिसमें मियां बीवी दोनों का दखल हो वो फस्खे निकाह शुमार करेंगे, उसको तलाक शुमार नहीं कर सकते। यहां मियां बीवी में से जब कोई एक मुसलमान हुआ है तो दोनों में जुदाई आएगी इख्तिलाफ दीन की वजह से। एक मुसलमान है, दूसरा गैर मुस्लिम है, तो ये जो इख्तिलाफ दीन है इसमें तो दोनों का दखल है भाई। एक का दीन और है, दूसरे का दीन और, जब जुदाई के अंदर मियां बीवी दोनों का दखल हो उसको फसख शुमार करते हैं। अगर सिर्फ खावंद का दखल हो फिर उसको तलाक शुमार करते हैं। तो इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के नजदीक मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो जाए तो उसको फसख निकाह शुमार करते हैं, क्योंकि दोनों का उसमें दखल। इसी तरह यहां पर भी वो फरमाते हैं, मियां बीवी में से जब एक मुर्तद हुआ है तो अब दोनों में इख्तिलाफ दीन आ गया। क्या आ गया, इख्तिलाफ दीन आ गया, तो लिहाजा दोनों का दखल है इसके अंदर। जब दोनों का दखल है तो उसी तरह इसको फस्खे निकाह करार देंगे, इसको तलाक करार नहीं देंगे, फस्खे निकाह ही करार देंगे। तो कहते हैं वह अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह जो हैं, मर्रा अला मा असलना लहू, वो चले हैं, वो गुजरे हैं, अला मा उसी कानून पर, असलना लहू जिसको हमने उनके लिए असल करार दिया था, वो उसी कानून पर जिसको हमने उनके लिए असल करार दिया था। फिल इबाई, इबा अनिल इस्लाम के मसले में कि जुदाई में दोनों का दखल हो तो उसको फसख शुमार करते हैं। तो यूं तर्जमा कर लें, वह अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, मर्रा अला मा असलना लहू, वो गुजरे हैं, वो चले हैं उसी चीज पर जिसको हमने इनके लिए असल करार दिया था। फिल इबा, इबा के मसले में। वह अबू हनीफा रहमहुल्लाह तआला फर्रक बैनहुमा, जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने दोनों में फर्क किया है। भाई देखिए ना, वहां मियां बीवी में से अगर खावंद इनकार करता था इस्लाम से तो इमाम साहब फरमाते थे ये तलाक के हुक्म में है, क्योंकि जुदाई किसकी तरफ से आई, खावंद की तरफ से। तवज्जो है, तो इबा के यानी इनकार के मसले में इमाम साहब खावंद की तरफ से जुदाई आए तो उसको तलाक शुमार करते हैं, लेकिन मुर्तद होने वाले मसले में अगरचे खावंद ही क्यों ना मुर्तद हुआ हो, इस जुदाई को इमाम साहब तलाक शुमार नहीं करते। हालांकि दोनों में जुदाई खावंद की तरफ से आ रही है, इनकार अनिल इस्लाम में भी और इर्तेदाद में भी। लेकिन इमाम साहब दोनों में फर्क करते हैं, इनकार अनिल इस्लाम जो है खावंद की तरफ से हो उसको वो तलाक शुमार करते हैं, और अगर इर्तेदाद खावंद की तरफ से हो तो उसको तलाक शुमार नहीं करते। मालूम हो उन्होंने दोनों मसलों में फर्क किया है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने भी दोनों जगह एक ही हुक्म लगाया, उनके नजदीक दोनों जगह ये जुदाई अगर खावंद की तरफ से आए या इर्तेदाद खावंद की तरफ से आए तो फिर यह तलाक है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने भी दोनों जगह एक ही जाब्ता जिक्र किया कि खावंद इनकार करे या खावंद मुर्तद हो जाए, दोनों सूरतों में फस्ख निकाह ही है, तलाक नहीं है। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं अगर खावंद इस्लाम से इनकार करता है तो फिर यह तलाक है, और अगर खावंद मुर्तद होता है तो फिर यह तलाक नहीं है, यह फस्ख निकाह है। तो इमाम साहब ने इनकार अनिल इस्लाम और इर्तेदाद में फर्क किया है। अब उसकी क्या वजह है अब वो जिक्र करेंगे। तो कहते हैं वह अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला फर्रक बैनहुमा, और इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने इन दोनों में फर्क किया है। किन दोनों में? इनकार और इर्तेदाद में, खावंद का इर्तेदाद या खावंद का इनकार, इनमें फर्क किया है। वह वजहू, और इस फर्क की वजह यह है कि अन्न रिद्दता मुनाफियतुन लिन निकाही, कि मुर्तद होना निकाह के मुनाफी है, मुर्तद होना निकाह के मुनाफी है। लिकाउन यहां मुनाफियतन लिल इस्मती, इसलिए क्योंकि मुर्तद होना इस्मत के मुनाफी है। याद रखो जो शख्स मुर्तद होता है वो मुबाहुल नफ्स भी बन गया और मुबाहुल माल भी बन गया, उसकी मिल्कियत अपनी जान से भी खत्म और अपने माल से भी खत्म हो जाती है, कोई भी उसको कत्ल कर सकता है, वो क्या बन चुका है? मुबाहुल नफ्स बन चुका है, मुबाहुल माल बन चुका है, उसकी अपनी जान पर से भी उसकी मिल्कियत खत्म और अपने माल पर से भी उसकी मिल्कियत खत्म हो गई। तवज्जो है, देखिए वह वजहू, और इस फर्क की वजह यह है कि नरिद्दता मुनाफियतुन लिन निकाही, कि मुर्तद होना निकाह के मुनाफी है। इर्तेदाद और निकाह जमा नहीं हो सकते भाई, दोनों में मुनाफात है। लिकाउन यहां मुनाफियतन लिल इस्मती, इसलिए क्योंकि मुर्तद होना इस्मत के मुनाफी है। इस्मत का क्या माना? हिफाजत, हिफाजत। आप पढ़ते रहते हैं अंबिया मासूम हैं, क्या माना? महफूज हैं, यानी अंबिया से गुनाह कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह की तरफ से उनकी खास हिफाजत की जाती है। तो अंबिया क्या है? मासूम है। तो इस्मत का माना है हिफाजत। कहते हैं लिकाउन यहां मुनाफियतन लिल इस्मती, इसलिए क्योंकि मुर्तद होना हिफाजत के मुनाफी है। जब कोई शख्स मुर्तद होता है तो अब ना उसकी जान महफूज और ना उसका माल महफूज, भाई कोई भी उसको कत्ल कर सकता है, वो मुबाहुद दम हो चुका है, वो मुबाहुद दम हो चुका है। लिकौनिहा मुनाफियतन लिल इस्मती, इसलिए क्योंकि मुर्तद होना यह इस्मत के मुनाफी है, यानी हिफाजत के मुनाफी है। मालूम हुआ अपनी जान पर से भी मिल्कियत खत्म और अपने माल पर से भी मिल्कियत खत्म। जब हर मिल्कियत खत्म हो रही है मुर्तद की, तो मिल्कियत निकाह भी क्या है? वो भी बरकरार नहीं रही, वो भी खत्म हो गई। मिल्कियत निकाह भी क्या हुई? खत्म हुई। और वह तलाक राफ़िउन, और तलाक ये तो निकाह को उठाने वाली है, तलाक निकाह को उठाने वाली है। फतअज़्ज़रा अन तुज़ाला तलाकन, लिहाजा मुतअज़्ज़िर हो गया कि इस इर्तेदाद को तलाक करार दिया जाए। भाई देखिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं खावंद इस्लाम से इनकार करे ये तो तलाक है, लेकिन अगर खावंद मुर्तद हो जाए ये तलाक नहीं। वजह यह कि मुर्तद होना ये निकाह के मुनाफी है, इर्तेदाद और निकाह जमा हो ही नहीं सकते। मुर्तद को आपने पढ़ा है निकाह करने की भी इजाजत नहीं है, और मुर्तद होते ही उसका निकाह भी क्या हो चुका? खत्म। तो इर्तेदाद निकाह के मुनाफी है। वजह यह कि मुर्तद होने की वजह से उसकी जान और माल की इस्मत खत्म हो चुकी है। मालूम हुआ इर्तेदाद निकाह के मुनाफी है, और तलाक जो होती है वो तो निकाह को उठाती है। तलाक क्या करती है? निकाह को उठा देती है, खत्म कर देती है। तो इस इर्तेदाद को हम तलाक करार नहीं दे सकते, क्योंकि तलाक तो निकाह के बाद आया करती है और इर्तिदाद तो निकाह के मुनाफी है। तो जब एक चीज निकाह के मुनाफी है तो आप इसको तलाक कैसे करार दे सकते हैं? तलाक तो निकाह के बाद आती है। बात भी समझ में आई कि नहीं? फिर समझो, फिर समझो, ये मुश्किल जगह है कि देखो ये जो इर्तेदाद है ये निकाह के मुनाफी है। ये निकाह के इर्तेदाद और निकाह जमा नहीं हो सकते। जब इर्तेदाद और निकाह जमा नहीं हो सकते तो इर्तेदाद को आप तलाक भी करार नहीं दे सकते, क्योंकि तलाक रफ़ए निकाह का नाम है और इर्तेदाद के साथ तो निकाह साबित ही नहीं हो सकता कि आप इसको रफ़ए निकाह करार दे दें। आप इस इर्तेदाद को रफ़ए निकाह यानी तलाक करार देना चाहते हैं, भाई इर्तेदाद के साथ निकाह का सबूत ही नहीं हो सकता तो रफ़ए निकाह कहां से? एक चीज का पहले सबूत होता है ना, फिर उसके बाद उसको खत्म किया जाता है। तो इर्तेदाद के साथ तो निकाह का सबूत ही नहीं हो सकता तो फिर आप इर्तेदाद को तलाक यानी रफ़ए निकाह कैसे करार दे सकते हैं? रफ़ए निकाह तो वहां होगा जहां पहले निकाह का तो सबूत हो सके, तो इर्तेदाद के साथ तो निकाह का सबूत ही नहीं हो सकता, लिहाजा आप इसको तलाक यानी रफ़ए निकाह भी करार नहीं दे सकते। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं अन्नर रिद्दता मुनाफियतुन लिल निकाही, मुर्तद होना निकाह के मुनाफी है। लिकौनिहा मुनाफियतन लिल इस्मती, इसलिए क्योंकि मुर्तद होना यह इस्मत के मुनाफी है। व तलाक राफिउन, और तलाक जो है वो तो निकाह को उठाने वाली है। फतअज़्ज़रा अन तुजअला तलाकन, तो ये बात मुतअज़्ज़िर हो गई कि इस मुर्तद होने को तलाक करार दिया जाए, क्योंकि तलाक तो वो रफ़ए निकाह का नाम है और रफ़े निकाह वहीं हो सकता है जहां पहले निकाह का सबूत तो हो सके, और इर्तिदाद के साथ तो निकाह का सबूत ही नहीं हो सकता तो आप इसको रफ़े निकाह कैसे करार देंगे? इर्तिदाद के साथ तो निकाह का सबूत ही नहीं हो सकता तो आप इसको रफ़े निकाह कैसे करार देंगे? सबूत हो सके निकाह का फिर आप रफ़े निकाह भी करार दे सकते हैं। बिखिलाफिल इबाई, बखिलाफ खावंद के इस्लाम से इनकार करने के। लिअन्नहु युफव्वितुल इमसाक बिल मारूफी, इसलिए क्योंकि खावंद का मुर्तद होना यह फौत कर देता है, फौत कर देता है अल इमसाक बिल मारूफी, इमसाक बिल मारूफ को। भाई कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, खावंदों को क्या हुक्म है कि बीवियों को अच्छे तरीके से रोकें, और तसरीहुम बि एहसान, या फिर उनको एहसान के साथ रुखसत कर दें यानी तलाक दे दें। तो वहां पर भी जब मियां बीवी में से बीवी मुसलमान हो गई थी तो काजी जो है खावन पर इस्लाम को पेश करेगा। अब खावन मुसलमान होकर इमसाक बिल मारूफ पर अमल कर सकता था, मुसलमान हो जाता तो निकाह बरकरार रहता, इसने बीवी को अच्छे तरीके से रोक लिया। तो खावन मुसलमान होकर इमसाक बिल मारूफ पर अमल कर सकता था, यह उसके इख्तियार में था, लेकिन उसने इनकार कर दिया तो मालूम हुआ उसने इमसाक बिल मारूफ को तर्क कर दिया। जब इमसाक बिल मारूफ को इसने तर्क कर दिया तो अब वाजिब हुआ कि तसरीह बिल एहसान पर अमल किया जाए, तो काजी उसका नाइब बनकर तसरीह बिल एहसान पर अमल कर देगा। और तसरीह तो किस चीज का नाम था, तलाक का नाम था, तो यह तलाक शुमार होगी। तो कहते हैं बिखिलाफ इल इबाई, बखिलाफ खावंद के इस्लाम से इनकार करने के कि वो निकाह के मुनाफी नहीं है। खावंद इस्लाम से इनकार करे ये निकाह के मुनाफी नहीं है, चुनाचे इसीलिए इसीलिए जब तक काजी जुदाई नहीं करवाता जुदाई नहीं आई। औरत मसला ले गई काजी के पास कि मैं मुसलमान हो गई हूं, मेरा खावंद मुसलमान नहीं, तो मालूम हो वह अभी तक इनकार कर रहा है, मुसलमान नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी निकाह बरकरार है। जब काजी उस पर इस्लाम को पेश करेगा और वो इनकार करेगा फिर काजी जुदाई करवाएगा, मालूम हुआ इस्लाम से इनकार ये निकाह के मुनाफी नहीं है, उसके बाद भी निकाह रहता है जब तक काजी जुदाई न करवा दे। बात समझ में आ गई? जबकि इर्तेदाद वो तो निकाह के मुनाफी है भाई, तो लिहाजा इर्तेदाद निकाह के मुनाफी है लिहाजा उसको तलाक करार नहीं दिया जा सकता। जबकि इबा अनिल इस्लाम ये तो निकाह के मुनाफी नहीं, यहां निकाह रह सकता है, तो लिहाजा इसको तलाक भी करार दिया जा सकता है। तो कहते हैं बिखिलाफ इल इबाई, बखिलाफ इनकार करने के लिए, अन्नहु युफवितुल इमसाक बिल मारूफी, इसलिए क्योंकि ये इनकार जो है ये फौत कर देता है इमसाक बिल मारूफ को, फयजिबु तसरीहु बिल एहसानी अला मा मर्रा, तो वाजिब हो जाएगा तसरीह बिल एहसान बवजह उसके जो बात गुजर गई। व लिहाजा ततवक्कफुल फुरकतु बिल इबाई अलल कजाई, और इसी वजह से जुदाई मौकूफ रहेगी बिल इबाई इनकार की वजह से, अलल कजाई कजाए काजी पर, वला ततवक्कफु बिर रिद्दती, और जुदाई मौकूफ नहीं रहेगी मुर्तद होने की वजह से। भाई याद रखो मुर्तद होना यह निकाह के मुनाफी है, लिहाजा मुर्तद होते ही निकाह खत्म, इर्तिदाद के साथ सबूत निकाह नहीं हो सकता, जबकि इबा अनिल इस्लाम जो है उसके साथ निकाह रह सकता है, इसलिए वहां जब तक काजी जुदाई नहीं करवाएगा दोनों में जुदाई नहीं आएगी। तो इबा अनिल इस्लाम में काजी की जुदाई जरूरी है, फिर ही जुदाई आएगी, उससे पहले जुदाई नहीं। जबकि मुर्तद होने के अंदर किसी काजी के फैसले की जरूरत नहीं, मुर्तद होते ही उसी लम्हे में निकाह खत्म हो जाएगा। फर्क समझ में आ गया, यह माना है वलिहादा, और इसी वजह से ततवक्कफुल फुरकतु बिल इबाई, वो जुदाई जो इनकार की वजह से आई है वो मौकूफ रहती है अलल कजाई काजी के फैसले पर, वला ततवक्कफु बिर रिद्दती, और वो जुदाई जो मुर्तद होने की वजह से आई है वो कजाए काजी पर मौकूफ नहीं रहती। सुम इनकान ज़ौजुहु अलमुर्तद्दु फलहा कुल्लुल महरी, यहां यह इबारत देख लीजिए भाई, सुम इनकाना जौज हुअल मुर्तद्दु, भाई देखिए ये काना आया और अजौजु ये काना का इसम है, और हुअल मुर्तद्दु यहां आप यूं भी पढ़ सकते हैं, सुम इनकाना जौज हुअल मुर्तद्दु, मुर्तद पर रफा भी पढ़ सकते हैं, और इसी तरह अल मुर्तद पर नसब भी पढ़ सकते हैं, सुम इनकाना जौज हुअल मुर्तद्द, रफा पढ़ेंगे किस तरह कि अज़ौज इसको काना का इसम बना दें और हुअल मुर्तद इस पूरे जुमले को खबर बनाएं काना की। यह हुअल मुर्तद पूरा जुमला है, हुआ है मुबतदा और अल मुर्तद क्या है खबर, मुबतदा खबर मिलकर यह काना की खबर हुई भाई, तो यह पूरा जुमला महलन मंसूब है क्योंकि काना की खबर मंसूब होती है। दूसरी तरकीब यहां आप यूं भी कर सकते हैं कि अज़ौजु इसको काना का इसम बनाएं और अल मुर्तद्दा इसको काना की खबर बना दें, और देखो यहां पर काना की खबर भी मारिफा है, जब मुबतदा और खबर दोनों मारिफा हों या इसी तरह काना का इसम और खबर दोनों मारिफा हों तो फिर दरमियान में फसल कबीले आते हैं, एक जमीर की सूरत का सीगा ले आते हैं जो ये बतलाता है कि ये दोनों आपस में मौसूफ सिफत नहीं है, क्योंकि अज़ौज भी क्या मारिफा, अलमुर्तद भी क्या मारिफा, तो बजाहिर शुबा होता है शायद ये आपस में मौसूफ सिफत हैं भाई, तवज्जो है, तो फिर इस सूरत में दरमियान में जमीर जैसा एक सीगा ले आते हैं जैसे यहां पर हुआ ले आए भाई, और फिर इससे फर्क हो गया कि अब पता चल गया कि यह अलमुर्तद यह ज़ौज की सिफत नहीं है क्योंकि मौसूफ सिफत के दरमियान तो फसल नहीं किया जाता। तो क्या दो तरकीबें हुई, पहली तरकीब अज़ौज को काना का इसम बनाए और हुअल मुर्तद पूरे जुमले को काना की खबर, इस सूरत में अल मुर्तदू पर रफा पड़ेंगे, और दूसरी तरकीब यह है अज़ौज को काना का इसम बनाए, हुआ को फसल करार दें और अल मुर्तद जो है इसको काना की खबर बना दें। तवज्जो है, तो सुम इनकान अज़ौज हुअल मुर्तदू, यह यूं भी पढ़ सकते हैं सुम इनकान अज़ौज हुअल मुर्तद फलहा कुल्लुल महरी, बात समझ में आ गई, सुम इनकान ज़ौज हुअल मुर्तद्दु फलहा कुल्लुल महरी। जी अब महर का मसला बयान कर रहे हैं, मियां बीवी में से अगर कोई एक मुर्तद हो गया तो फिर याद रखो अगर खावंद सोहबत कर चुका है बीवी से तो सोहबत की वजह से महर पक्का हो चुका है, लिहाजा चाहे खावंद मुर्तद हो चाहे बीवी मुर्तद हो सोहबत के बाद महर पूरा ही देना पड़ेगा, और अगर ये मुर्तद होना सोहबत से पहले हुआ, मुर्तद होना सोहबत से पहले हुआ, तो अगर मुर्तद खावंद हुआ है तो फिर निस्फ महर देना पड़ेगा, जुदाई खावंद की तरफ से आई है तो लिहाजा निश्चय महार देना पड़ेगा सोहबत से पहले अगर वो खावंद मुर्तद हुआ है। और अगर औरत मुर्तदा हुई है सोहबत से पहले तो ये जुदाई औरत की तरफ से आई है, जब जुदाई औरत की तरफ से आई है तो अब औरत को निश्चय महार भी नहीं मिलेगा भाई। तो कहते हैं सुम्म इनकान अज़्ज़ौज हुवा अल-मुर्तद, फिर अगर खावन जो है वो मुर्तद है फलाहा कुल्लुल महरी इन दखल बिहा, तो उस औरत के लिए सारा महर होगा अगर खावंद उसके साथ सोहबत कर चुका है। वह निस्फुल महरी इल्लम यदखुल बिहा, और उस औरत के लिए निस्फ महर होगा अगर खावंद ने उसे सोहबत नहीं की। ये वो सूरत है जब खावन मुर्तद हुआ है। वह इन कानत ही अल मुर्तदता, और अगर ये औरत जो है ये मुर्तदा हुई है फलाहा कुल्लुल महरी इन दखल बिहा, तो इस औरत के लिए पूरा महर होगा अगर खावन ने इसे सोहबत की है। वह इल्लम यदखुल बिहा फला महरा लहा, और अगर खावन ने इसे सोहबत नहीं की तो इसके लिए कोई महर नहीं होगा। वला नफकता, और नफका भी नहीं होगा। ले अनल फुरकता मिन क़िबलिहा, इसलिए क्योंकि ये जुदाई औरत की जानिब से आई है। मसला समझ में आया कि अगर औरत मुर्तदा हुई है सोहबत से पहले तो फिर जुदाई औरत की तरफ से आई, लिहाजा इसको निस्फे महार नहीं मिलेगा। और नीज ये भी कहा फला महरा लहा वला नफकता, इसके लिए महर भी नहीं होगा और नफका भी नहीं। इस पर जहनों में सवाल पैदा होता है कि सोहबत से पहले अगर जुदाई आए तो वहां तो औरत पर इद्दत नहीं होती, अगर इद्दत होती तो औरत के लिए नफका होता, इद्दत ही नहीं तो नफका कहां से आ सकता है। तो साहिब हिदाया की इस कहने का क्या माना, फला महरा लहा वला नफका था, नहीं इस औरत के लिए महर है और ना नफका है, नफका तो आना ही नहीं था तो वला नफका कहने की क्या जरूरत थी। तो जवाब यह कि वला नफका का ताल्लुक पहली सूरत से है जब खावंद ने सोहबत की है, खावंद ने, और फिर औरत मुर्तदा हुई है सोहबत के बाद, और सोहबत के बाद जब जुदाई आती है तो औरत पर इद्दत आया करती है, खावंद पर इद्दत का नफका आता है। तो बतला रहे हैं कि नहीं, अगर सोहबत के बाद भी जुदाई आई है तो औरत के लिए नफका नहीं होगा। बात समझ में आ गई, महर अलबत्ता उसको पूरा मिलेगा क्योंकि सोहबत हो चुकी है भाई। आगे देखिए काल व इधर तद्दा मान सुम्मा असलमा मान फहुमा अला निकाहिहिमा। पहले तो मसला जिक्र किया कि मियां बीवी में से कोई एक मुर्तद हुआ, अब सूरत जिक्र कर रहे हैं दोनों इकट्ठे मुर्तद हुए और फिर दोनों इकट्ठे मुसलमान दोबारा हो गए। तो मुर्तद होते ही निकाह तो फासिद हो जाता है, तो क्या अब इनका क्या हुक्म है। तो आपको बताएंगे कि अगर दोनों इकट्ठे ही मुर्तद हुए और फिर इकट्ठे ही मुसलमान हुए तो फिर ये दोनों अपने निकाह पर हैं, ये दोनों अपने निकाह पर हैं, और ये हुक्म इस्तेहसानन है, बतौर इस्तेहसान के ये अपने निकाह पर हैं। कियास तो वही तकाजा करता है कि जब एक के मुर्तद होने की सूरत में निकाह टूट जाता था तो दोनों के मुर्तद होने की सूरत में बतरीके औला निकाह टूट जाएगा भाई, लेकिन इस्तेहसानन ये दोनों अपने निकाह पर हैं। कब? जब दोनों इकट्ठे मुर्तद हुए और इकट्ठे मुसलमान हो गए, अब दोबारा नए सिरे से निकाह करने की हाजत नहीं है। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह इधर तद्दा मान, और जब मियां बीवी दोनों इकट्ठे मुर्तद हुए सुम्मा असलमा मान, फिर दोनों इकट्ठे मुसलमान हो गए फहुमा अला निकाह ही मा, तो ये दोनों अपने निकाह पर हैं इस्तेहसानन, और ये हुक्म बतौर इस्तेहसान के है, तो ये हुक्म इस्तेहसानन है। वकाल जुफर रहिमहुल्लाह ताला यबतुलू, और इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इनका निकाह बातिल हो गया है। लिअन्न रिद्दता अहदिहिमा मुनाफियतुन, इसलिए क्योंकि दोनों में से एक का मुर्तद होना ये निकाह के मुनाफी था। वफी रिद्दतिहिमा रिद्दतु अहदिहिमा, और दोनों के मुर्तद होने में एक का भी तो मुर्तद होना है भाई, एक का मुर्तद होना भी क्या था, निकाह के मुनाफी था। तो जब दोनों मुर्तद हुए हैं तो इसमें भी एक का मुर्तद होना पाया जा रहा है या नहीं, तो इस सूरत में भी क्या होना चाहिए, निकाह बातिल होना चाहिए। तो कहते हैं ले अन्न रिद्दता अहदिहिमा मुनाफियतुन, इसलिए क्योंकि दोनों में से एक का मुर्तद होना निकाह के मुनाफी है। व फिर रिद्दतिहिमा रिद्दतु अहदिहिमा, और दोनों के मुर्तद होने में एक का मुर्तद होना भी आ गया, दोनों के मुर्तद होने में एक का मुर्तद होना भी है, तो लिहाजा निकाह बातिल होगा। वलना, अब हमारी दलील आ गई। वलना, और हमारी दलील जो है मारूए वो जो रिवायत किया गया है कि अन्न बनी हनीफा तर्तद्दू, कि बनु हनीफा एक अरब का कबीला था भाई, ये मुर्तद हो गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद ये बनू हनीफा वाले जो थे ये मुर्तद हो गए, इन्होंने जकात देने का इनकार कर दिया। ये कहते थे भाई जकात लेना तो पैगंबर का काम है, पैगंबर तो तशरीफ ले गए, अब हम जकात किसी को नहीं देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो जो हैं उन्होंने इनकी तरफ लश्कर भेजे कि तुम्हें जकात अदा करना पड़ेगी, हत्ता के हुजूर के जमाने में अगर तुम एक रस्सी भी जकात के अंदर जो दिया करते थे अगर तुम वो भी रोकोगे तो मैं तुम्हारे साथ जंग करूंगा। और वो भी बई एतबार मुर्तद थे कि वो बाकी अहकाम से वो नहीं फिरे थे, सिर्फ ये कहा था हम जकात अदा नहीं करेंगे, जकात लेना पैगंबर का काम है, किसी और को हम जकात नहीं देंगे। तो हज़रत बकर ने लश्कर भेजे और फिर बिलाखिर वो दोबारा मुसलमान हुए। और ये वाकया तमाम सहाबा की मौजूदगी में हुआ और उनको सहाबा ने तजदीद निकाह का हुक्म नहीं दिया। वो पहले मुर्तद हुए थे फिर दोबारा मुसलमान हो गए, लेकिन सहाबा ने उनको निकाह की तजदीद का हुक्म नहीं दिया कि नए सिरे से अपने निकाह करो सारे, क्योंकि तुम मुर्तद हुए थे, निकाह फसख हो गया था। तो मालूम हुआ इकट्ठे मुर्तद हों और फिर इकट्ठे मुसलमान हो जाएं तो वो अपने निकाह पर बरकरार रहेंगे। भाई तो कहते हैं वलना और हमारी दलील मारूविया, वो जो रिवायत किया गया है कि अन्ना बनी हनीफा तरतद्दू के बनू हनीफा कबीले वाले मुर्तद हो गए, सुम्मा असलमु फिर वो सारे मुसलमान हो गए, वलम यअमुर हुमुस सहाबतु रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम बितजदीदिल अनकिहा और हुक्म नहीं दिया उनको सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने निकाहों की तजदीद का। मालूम हुआ इस पर सहाबा का इजमा हो गया, किसी ने भी रद्द नहीं किया, किसी ने भी एतराज नहीं किया। मालूम हुआ इस पर सहाबा का इजमा हो गया कि अगर कोई मियां बीवी इकट्ठे मुर्तद हों और फिर इकट्ठे मुसलमान हो तो उनका निकाह बरकरार रहता है। कहते हैं वल इर्तिदादु मिनहुम वाकिउन मअन लिजहालति तारीखी, यहां से दरअसल साहिब हिदाया के एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज यह होता है कि ऐ साहिब हिदाया मसला जिक्र हो रहा है कि मियां बीवी इकट्ठे मुर्तद हुए और फिर इकट्ठे मुसलमान हुए और आप दलील के तौर पर बनू हनीफा का वाकया जिक्र फरमा रहे हैं कि वो सारा कबीला मुर्तद हुआ था और फिर सारा कबीला दोबारा मुसलमान हुआ तो उनको सहाबा ने तजदीद निकाह का हुक्म नहीं दिया। तो कहते हैं भाई बनू हनीफा के अंदर तो यह जरूरी नहीं कि वह सारे इकट्ठे मुर्तद हुए हों, हो सकता है खावंद पहले मुर्तद हुआ और बीवी बाद में मुर्तद हुई। इसी तरह इस्लाम ला रहे हैं तो हो सकता है मियां बीवी में से एक फर्द पहले मुसलमान हुआ और दूसरा बाद में हुआ, तो आप इनको इकट्ठा कैसे करार दे सकते हैं कि ये इकट्ठे मुर्तद हुए थे और फिर इकट्ठे ही मुसलमान हो गए। तो उसका जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया कि ये जो इर्तेदाद हुआ था इसको इकट्ठा इसलिए शुमार करेंगे क्योंकि यहां तारीख मजहूल है, तकदीम और ताखीर का पता नहीं चल सकता कि कौन पहले मुर्तद हुआ था और कौन बाद में मुर्तद हुआ था। और जब तारीख मजहूल हो जाए, एक चीज की तकदीम और ताखीर का पता न चल रहा हो, तो फिर उसको इकट्ठा ही शुमार किया जाता है। तो यहां पर भी उनके इर्तेदाद की तारीख मजहूल है, लिहाजा उनके इर्तेदाद को इकट्ठा ही शुमार किया जाएगा। बात समझ में आ गई। ये इसी तरह है जैसे वरासत के मसले में है, याद रखो वारिस वही रिश्तेदार बनता है जो मोरिस के इंतकाल के वक्त जिंदा हो। जैद का इंतकाल हुआ तो जो उसकी औलाद जिंदा है वही वारिस बनेगी। अगर जैद की जिंदगी में एक बेटे का इंतकाल हो गया था तो वो बेटा या उसकी औलाद अब वारिस नहीं बनेंगे। भाई तवज्जो है, वारिस कौन से रिश्तेदार बनते हैं? जो मोरिस की मौत के वक्त जिंदा हो। तो लिहाजा वरासत में मसला जिक्र होता है कि अगर किसी जगह मसलन जलजला आया और घर गिर पड़ा और घर के अंदर वारिस मोरिस वगैरह जो थे वो इस मकान के अंदर दब गए और वो मर गए। भाई मसलन मियां बीवी थे वो दोनों छत के नीचे आए और दोनों मर गए। अब अगर दोनों इकट्ठे मरे हों फिर तो दोनों एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे, लेकिन अगर दोनों में से एक का इंतकाल पहले हुआ है और एक का इंतकाल बाद में, मसलन छत गिरी है तो यह जरूरी तो नहीं कि दोनों की मौत इकट्ठी वाके हो सकता है एक का इंतकाल पहले हुआ हो और दूसरा शदीद जख्मी है लेकिन थोड़ी देर बाद उसका इंतकाल हुआ। तो जब एक का इंतकाल पहले हुआ है तो दूसरा उसका वारिस बनेगा। लेकिन चूंकि यहां पर तकदीम और ताखीर का पता नहीं चल सकता, मलबे के नीचे दोनों दब गए और दोनों मर गए। हो सकता है एक पहले मरा हो, एक बाद में मरा हो, लेकिन यहां तकदीम और ताखीर का पता नहीं चल सकता। और जब तकदीम और ताखीर का पता नहीं चल सकता तो दोनों को इकट्ठा ही शुमार किया जाता है, और यूं समझेंगे दोनों इकट्ठे मरे हैं, लिहाजा दोनों एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे भाई। तो यहां पर भी इसी तरह है, जब इर्तिदाद की तारीख मजहूल है तो यूं ही समझेंगे जैसे इकट्ठे ही वो मुर्तद हुए थे। तो कहते हैं वल इर्तिदाद मिनहुम वाकिउम मान, और मुर्तद होना इनकी तरफ से वाक हुआ था मान इकट्ठा ही, लि जहालती तारीखी, तारीख के मजहूल होने की वजह से कि तारीख मजहूल है, तकदीम व ताखीर का यहां इलाम नहीं, तो इसको इकट्ठा ही शुमार करेंगे। भाई यहां इस्तेहसान का जिक्र आया, मैंने आपको बतलाया था कि इस्तेहसान वो मुत्तफ़क़ुन अलैह दलील है जिसके मुकाबले में कियास आए, यानी एक तरफ कुरान की आयत है और दूसरी तरफ उसके मुकाबले में कियास आ रहा है, तो कुरान को तरजीह होगी, कुरान पर अमल किया जाएगा और इसको इस्तेहसान कहेंगे क्योंकि इसके मुकाबले में कियास है भाई। इसी तरह अगर एक तरफ हदीस है और एक तरफ कियास है तो हदीस पर अमल किया जाएगा और हदीस को तरजीह होगी, लेकिन इस हदीस को अब इस्तेहसान कहेंगे क्योंकि इसके मुकाबले में कियास आ रहा है। इसी तरह अगर एक तरफ इजमा हो और दूसरी तरफ कियास हो तो इजमा पर अमल किया जाएगा भाई, तो लेकिन इस इजमा को इस्तेहसान कहेंगे क्योंकि उसके मुकाबले में कियास मौजूद है। लेकिन ज्यादातर इस्तेहसान का इतलाक कियास खफी पर होता है। मैंने बताया कि कियास जो है यह अकली दलील का नाम है, तो ये अकली दलील ये दो किस्म पर है, या ये कियास जली होगा या कियास खफी होगा। कियास जली यानी जो जाहिर हो, जली का क्या माना जाहिर, और खफी का क्या माना जो पोशीदा है। कियास जली वो है कि जो बात जाहिर है जहां तक अकल फौरन पहुंच जाती है उसको कियास जली कहते हैं, और अगर बात जरा गहरी हो और गौर व फिक्र करना पड़ता हो फिर ही जहन वहां तक पहुंचता है तो इसको कियास खफी कहते हैं। तो इस्तेहसान उस मुत्तफ़क़ुन अलैह दलील को कहते हैं जिसके मुकाबले में कियास आए, लेकिन ज्यादातर इसका इतलाक कियास खफी पर होता है। इस्तेहसान का इतलाक ज्यादातर कियास खफी पर होता है, लेकिन कियास खफी को भी तब इस्तेहसान कहेंगे जब इसके मुकाबले में कियास जली मौजूद हो गई। अगर कियास खफी के मुकाबले में कियास जली नहीं है फिर जितना मर्जी गहरा कियास हो उसको कियास ही कहते हैं, इस्तेहसान नहीं कहते। तो देखो ज्यादातर कियास खफी को इस्तेहसान कहते हैं, तवज्जो है। लेकिन मैंने आपको बताया कि असल में इस्तेहसान वो मुत्तफ़क़ुन अलैह दलील है जिसके मुकाबले में कियास आए, और यहां पर भी आप देखें एक तरफ कियास है तो एक तरफ सहाबा का इजमा है। कियास तो यह तकाजा करता है कि जब दोनों इकट्ठे मुर्तद हुए हैं तो एक के मुर्तद होने से निकाह बातिल होता था, तो दोनों के मुर्तद होने से बतरीके औला निकाह को बातिल होना चाहिए, जैसे कि इमाम जुफर का मजहब है। लेकिन तरजीह किसको है, इजमा को है, कि दूसरी तरफ सहाबा का इजमा मौजूद है, और इस इजमा को इन्होंने क्या कहा, इस्तेहसान कहा। देखा, मालूम हो वो मुत्तफ़क़ुन अलैह दलील जिसके मुकाबले में कियास आए उसको इस्तेहसान कहते हैं। तो यहां पर जो इस्तेहसान आया वो कियास खफी नहीं है बल्कि सहाबा का इजमा है, उसको इस्तेहसान कहा जा रहा है। बात समझ में आ गई। वलव असलम अहदुहुमा बादल इर्तिदादी फसदन निकाह बैनहुमा, सूरत मसला ये, मियां और बीवी दोनों मुर्तद हुए इकट्ठे, जब दोनों इकट्ठे मुर्तद हैं अभी भी निकाह है, फिर दोनों में से एक जो है मुसलमान हो गया तो क्या अब निकाह फासिद हो गया नहीं, कहते हां। जैसे इर्तेदाद जो है निकाह के मुनाफी है, इसी तरह जब दोनों में से एक मुसलमान हुआ है तो दूसरा इर्तेदाद पर इसरार कर रहा है, दूसरा अभी भी इर्तेदाद पर जमा हुआ है, तो जैसे इर्तेदाद निकाह के मुनाफी है इसी तरह इसरार अलल इर्तेदाद यह भी निकाह के मुनाफी है। तो दोनों मुर्तद हुए इकट्ठे और एक इनमें से पहले मुसलमान हो गया तो साथ ही निकाह टूट गया। अब अगर दूसरा मुसलमान हो भी जाता है, निकाह टूट चुका है, अब इनको नए सिरे से निकाह करना पड़ेगा। तो कहते हैं वलौ असलमा अहदुहुमा बादल इर्तिदादी, और अगर दोनों में से कोई एक मुसलमान हुआ मुर्तद होने के बाद, फसदन निकाहु बैनहुमा, तो भी निकाह फासिद हो जाएगा इन दोनों के दरमियान। इसरार आखरी अलर रिद्दति, इसलिए क्योंकि दूसरा जो है वो मुर्तद होने पर इसरार कर रहा है, वो मुर्तद होने पर जमा हुआ है। लिअन्नहु मुनाफिन कब्तिदा इहा, इसलिए क्योंकि इसरार अलल इर्तिदाद ये मुनाफी निकाह है। कब्तिदा इहा जैसे इब्तिदाई इर्तिदाद है, तो ये इसरार अलल इर्तिदाद मुर्तद होने पर इसरार करना ये भी मुनाफी निकाह है, जैसे इब्तिदाए इर्तिदाद निकाह के मुनाफी है, तो ये निकाह टूट जाएगा। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।